कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे आ हरे राम
राम राम
हरे
हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे
सभी लोग प्रेम से गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम
हरे राम
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare
Hare Rama
Hare Rama 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 Hare
Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Krishna Hare Krishna
Krishna
Krishna Krishna Hare
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare
Hare
Krishna Hare Krishna
Krishna Hare Hare
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Krishna Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram
Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Hare
Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna,
सभी लोग प्रेम से,
Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Shri Shri Radha Gopinath Bhagwan ki. श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भगवद गीता कोर्स के इस पंचम और अंतिम दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है कि चार दिन से यहां पर श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता का नित्यम श्रवण करने से गीतार्थे ध्यायते नित्यम। श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का या श्रीमद् भगवद गीता को जो निरंतर पढ़ता है कृत्वा कर्माणि भूरिशः वास्तव में वह बहुत अच्छा कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता पढ़ने से जीवन मुक्तो सविज्ञेयो वह इस दुख रूपी जीवन से मुक्त हो जाता है। जीवन से मुक्त नहीं होता है, व्यक्ति जीता है परंतु संसार के दुर्गुणों से संसार के दोषों से वह उपराम हो जाता है। जीवन मुक्तो और मृत्यु के बाद देहांते परमम पदम इस देह का अंत हो जाने के बाद भगवद गीता पढ़ने वाला भक्त परम पद को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन मुक्त करने वाला ग्रंथ है और इसी के साथ साथ मृत्यु के बाद भगवान का धाम प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ऐसी भगवद गीता का श्रवण हम चार दिन से कर रहे हैं और आज अंतिम और पंचम दिवस है। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान का इस संसार में अस्तित्व है और वह भगवान
निराकार भी है साकार भी है, वदन्ति तत्तत्वैदस्तत्वम्। तत्पश्चात हमने यह भी श्रवण किया कि भगवान एकमात्र कृष्ण है, अन्य जितने भी हैं वे सब देवी देवता हैं, जिनकी संख्या 33 करोड़ है। और फिर अंत में हमारा प्रश्न था कि कृष्ण ही यदि भगवान है तो नरसिंह, वामन, वराह, कच्छप इत्यादि यह सब कौन है? तो यह सब भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करते हैं, क्यों? अवतरिष्यति, अपने धाम से नीचे उतरना उसे अवतार कहा जाता है। ऊपर से नीचे आने की क्रिया को, भगवान के धाम से इस भौतिक जगत में आने की क्रिया को अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं क्यों? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है भगवान के अवतार लेने के 3 कारण हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, असुरों का बढ़ावा होता है, धर्म का नाश होता है, तब भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवाम युगे युगे। मैं युग युग में अवतार धारण करता हूं, क्यों? सबसे पहला कारण साधुओं का, भक्तों का परित्राण करने के लिए, भक्तों की रक्षा करना। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति जिनके कृत्य दुष है, जो पापी है, ऐसे असुरों का वध करने के लिए आते हैं। और तीसरा कारण बताते हैं धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान अपने धाम में देखते हैं कि इस पृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य बढ़ता है, पृथ्वी पाप से भारी हो जाती है, तब भगवान इस धरा धाम पर यथा योग्य अवतार धारण करते हैं। परंतु भगवान अवतार कैसे धारण करते हैं, यह अवतार कहां से आता है, यह जानना बहुत आवश्यक है। वास्तव में नरसिंह, वामन, वराह, ये जितने भी अवतार हैं, ये सभी अवतार भगवान विष्णु से प्रकट होते हैं, और विष्णु में भी शिरोदक्षायी विष्णु से प्रकट होते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तत्व का निरूपण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वरूप, प्रथम एक्सपांशन है बलदेव जी। बलदेव जी से संकर्षण वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, उस संकर्षण से और 4, संकर्षण वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और अंत में महासंकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में कारणोदकशायी विष्णु भी कहा जाता है। कारणोदकशायी विष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु प्रकट होते हैं, और गर्भोदकशायी विष्णु से शिरोदकशायी विष्णु प्रकट होते हैं, जो शीर सागर में शयन करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर अवतार लेना होता है, तब भगवान शिरोदकशायी विष्णु से अवतार प्रकट कराते हैं। ये जितने भी अवतार हैं शिरोदकशायी विष्णु से प्रकट हुए हैं, चाहे नरसिंह हो, वामन हो, वराह हो, राम हो, यह सब शिरोदकशायी विष्णु से प्रकट हुए हैं। यहां पर दिखाया गया है ये सब अवतार शिरोदकशायी विष्णु से होते हैं। और ये जो अवतार है भगवान के अंश और कला है, भगवान के अंश और उनके अंश से जन्म लेते हैं। और यह सब अवतारों में भगवान अपनी अपनी कला, अपनी अपनी शक्ति इस्तेमाल करते हैं। और पूर्ण कला भगवान ने अपने अवतार में नहीं साक्षात अपने ही स्वरूप में प्रकट की, जिसे 64 कला कहा जाता है, और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अब कृष्ण और कृष्ण के अवतार में कुछ अंतर है और कुछ अंतर नहीं भी है। वैसे भगवान और भगवान के अवतार में कोई अंतर नहीं है, परंतु तत्व से यदि देखा जाए तो थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे ब्रह्मा जी दृष्टांत देते हैं, दीपा चिरे वही दशांतर मभ्युपेत्य दीपा यते विवृत्त समान धर्मा यस्ताद्रिगे वही च विष्णु तया विभाति गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, जैसे 24 मोमबत्ती रखी हो, कैंडल आप जानते होंगे, 24 मोमबत्ती है और उस 24 मोमबत्ती में एक मोमबत्ती जल रही है, और उस एक मोमबत्ती जो जल रही है उससे सारी मोमबत्ती जलाई जाए और उस एक मोमबत्ती को बीच में रख दिया जाए तो किसी में अंतर नहीं दिखेगा, दिखेगा सब मोमबत्ती समान है। वैसे भगवान के सारे अवतार भगवान के समान है, परंतु तत्व से यदि देखा जाए तो ये 24 अन्य 23 मोमबत्ती हैं वो एक मोमबत्ती के कारण जल रही है। वैसे भगवान और भगवान के अवतार में कोई अंतर नहीं, कृष्ण और कृष्ण के अवतार में कोई अंतर नहीं, परंतु तत्व से ये जितने भी अवतार हैं कृष्ण से प्रकट होते हैं, कृष्ण के अंश से विष्णु से प्रकट होते हैं, बस इतना अंतर है। तो इस प्रकार भगवान के अनेक अवतार है, कोटि न मुख कही जात करोड़ों करोड़ों मुख भी मिल जाए तो भगवान के अवतार का वर्णन नहीं कर सकते हैं। हरि अनंत, भगवान का नाम ही है अनंत, उनके अनंत अवतार है, परंतु कृष्ण के 24 अवतार को मुख्य माना गया है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में इस 24 अवतार का वर्णन सुखदेव गोस्वामी और वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है। तो ये है भगवान के अवतार। परंतु अब प्रॉब्लम यहां पर है कि ठीक है सब भगवान के अवतार है, परंतु आज के कुछ लोग अपने आप को भगवान के अवतार मानते हैं, कुछ लोग कहते भी हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूं। तो अब कैसे पता चले कि ये कृष्ण का अवतार है या नहीं? तभी संसार में कोई कृष्ण का अवतार है या नहीं, इसको जानने के लिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर भगवान के अवतार के कुछ लक्षण होने चाहिए, और उनमें से सबसे पहला यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हुए हैं या होने वाले हैं, ये सभी अवतारों का वर्णन शास्त्र में दिया गया है, भागवत चाहे पुराण भविष्य पुराण इत्यादि। तो इस संसार में जो व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता है तो उसे पूछना चाहिए कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप भगवान हो, ये पहली बात। जैसे मानो भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार होगा कल्कि अवतार, तो वह कल्कि अवतार जो होने वाला है भविष्य में, उसके लिए करोड़ों वर्ष पहले ही शास्त्र में लिखा गया है कि वे कहां जन्म लेंगे, उनके माता का नाम क्या होगा, पिता का नाम क्या होगा। शास्त्र में यह भी बताया है कि आगे चलकर कल्कि अवतार होगा, उसके पिता का नाम विष्णु यशा होगा और इस गांव में उनका जन्म होगा। तो इस प्रकार पहली बात, उस अवतार का वर्णन शास्त्र में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि जो व्यक्ति अपने अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार बताता है तो उसे कहना चाहिए आप अपना विश्व रूप बताइए, क्योंकि विश्व रूप जो अवतार होता है वही बता सकता है, भगवान ही बता सकते हैं। यदि वह विश्व रूप बताता है तो अवतार हो सकता है। तीसरा पॉइंट, उस व्यक्ति को जो अपने आप को अवतार मानते हैं उसे अद्भुत कार्य करने चाहिए। अद्भुत माने तीनों गुणों से परे, जो इस संसार में कोई न कर सके, ऐसे कार्य करने चाहिए। जैसे गोवर्धन धारण करना, अपनी एक उंगली पर गोवर्धन का धारण करना, यह है अद्भुत कार्य। और भी बहुत सारे अद्भुत कार्य जैसे कृष्ण ने किए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपने गुरु के पास सांदीपनी मुनि के पास गए उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने, 64 दिन में 64 कला प्राप्त कर ली, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जब वापस लौट रहे थे अपने गुरु को कहा, गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। देखिए हमारे भारतवर्ष की यह प्रणाली थी कि एक शिष्य गुरुजी के पास से, गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरुजी से कहता है कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। परंतु आज के टीचर गुरु ही शिष्य आए उनके पहले बोर्ड पर लिखे हुए होते हैं, फ्लैक्स पर, 1 महीने की 500 रुपया फीस है, पहले पैसा बाद में पढ़ाना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पढ़ाना बाद में पैसा। कृष्ण ने कहा, गुरुजी क्या चाहिए? तब सांदीपनि मुनि ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु गुरु माता ने कहा कि हे कृष्ण, यदि देना ही है तो मेरा पुत्र मर गया है, उसे वापस ला के दो। अब मरे हुए को वापस कैसे लाएगा? अब देखिए संसार में कोई मर जाता है, संसार के सभी डॉक्टर सभी लोग मिलकर भी एक व्यक्ति को जिला नहीं सकते हैं। और ये सांदीपनि मुनि का पुत्र पिकनिक के लिए समुन्द्र के किनारे गया था और पिकनिक से वापस ही नहीं आया, वहां पर ही मर गया। तो कहा कि यदि गुरु दक्षिणा में देना है तो मेरे पुत्र को दो। तब भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी वहां से निकले और समुद्र के पास आए, समुद्र देवता को ललकारे। समुद्र देवता ने बाहर निकलकर कहा कि वो बालक हमारे पास नहीं है, हो सकता है इस समुद्र में शंखचूड नाम का, नहीं, पंचजन्य नाम का असुर रहता है, उनके पास हो। तब भगवान श्री कृष्ण समुद्र में प्रवेश किए, पंचजन्य नामक असुर का वध किए, परंतु वहां भी बालक नहीं मिला, लेकिन पंचजन्य शंख मिल गया, लेकर आ गए। लेकिन अब ढूंढ रहे थे कहां होगा बालक, कहां होगा। अंत में भगवान ने अतल वितल तलातल सभी लोक में ढूंढते ढूंढते, स्वर्ग लोक में ढूंढा, ब्रह्म लोक में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तब भगवान ने सोचा कि यदि मरा होगा तो यमराज जी के पास होगा। तब भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी यमराज जी के पास गए, नरक में संयमणिपुरी में। यमराज जी ने प्रणाम किया, भगवान ने कहा, मेरे गुरु जी का शिष्य आपके पास है? यमराज जी ने कहा हाँ। भगवान ने कहा तुरंत लौटाओ। यमराज जी ने कहा, प्रभु लेकिन इसके कर्म में लिखा है मृत्यु, इसे मरना है, इसके नसीब में कर्म में लिखा है, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, नेचुरल डेथ हुआ है इसका, कर्म के अनुसार ये मरा है। भगवान ने कहा, जो भी हो मैं कहता हूं, इसलिए मुझे वापस दो। तब भागवत में यह कथा आती है, दशम स्कंद में यमराज जी कहते हैं कि यद्यपि इसके कर्म में मरना लिखा है, लेकिन प्रभु आप कह रहे हो, क्योंकि आप तो कर्म के देवता हो, आप कह रहे हो, इसलिए हम आपको वापस लौटा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उस बालक को लेकर अपने गुरु के पास आए और प्रदान कर दिए। इसे कहते हैं अद्भुत कर्मण, आश्चर्यमय कर्म। ऐसे कार्य यदि कोई करे तो कहा जा सकता है ये भगवान है, भगवान का अवतार है। अब खुद मरने की स्थिति में है वो क्या भगवान बन सकता है? दांत निकल जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, 2-3 जन को उठा कर लेकर जाना पड़ता है, ये कभी भगवान नहीं हो सकते हैं। संसार के लोगों का ज्ञान है उसे भगवान मानते हैं, भगवान को कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है। तो इस प्रकार ये तीसरा पॉइंट है कि उसे अद्भुत कार्य करने चाहिए। चौथा पॉइंट है कि जो भगवान के अवतार होते हैं उसका उपदेश अद्वितीय होना चाहिए, अद्भुत उपदेश। जैसे कृष्ण ने भगवद गीता प्रदान किया, और तत्पश्चात पांचवा पॉइंट है कि जो भगवान का अवतार होता है उसके शरीर पर विशेष चिन्ह होते हैं, चिन्ह होने चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और हाथों में बहुत सुंदर चिन्ह है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भी चिन्ह है, वैसे अवतार जो होते हैं उसके चरणों में चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार भगवान के अवतार को यह सब बातों से पहचाना जा सकता है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि ये फलाने भगवान है कि नहीं, हमारे राजस्थान में सब लोग इसे भगवान मानते हैं। देखिए ये पांच चीज उसमें है तो भगवान है, भगवान का अवतार है, नहीं है तो नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के अवतार को पहचानने के लिए ये तब तक हमने यह श्रवण किया कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब 33 करोड़ देवी देवता है और नरसिंह वामन वराह ये सब कृष्ण के अवतार है, और अवतार बनने के लिए ये सब योग्यताएं होनी चाहिए। अब इस टॉपिक में हमारा अंतिम प्रश्न यह हो सकता है कि भगवान यदि एक है तो इतने सारे धर्म क्यों है, और इतने सारे धर्म है तो उसमें सच्चा धर्म कौन सा है, और सच्चा धर्म कौन सा है जिसको हम पालन कर सके, हमें कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। संसार में आज बहुत बड़ा प्रश्न है, इतने सारे धर्म क्यों और सच्चा धर्म कौन सा। वास्तव में यदि देखा जाए तो सभी धर्म सच्चे हैं, गलत धर्म कोई नहीं, सभी धर्म सच्चे हैं, परंतु धर्म के लेवल में अंतर है। आप देखिए लेवल में अंतर है, धर्म गलत नहीं है, बात को समझिए, गलत कोई धर्म नहीं है, परंतु कुछ धर्म थोड़े निम्न स्तर के हैं, कुछ धर्म ऊपर के, कुछ धर्म ऊपर के, कुछ धर्म ऊपर के, और सबसे जो टॉप मोस्ट धर्म है वह है सनातन धर्म, सबसे उच्च धर्म। ऐसा नहीं कहा जाएगा सबसे सच्चा धर्म कौन सा है, सच्चे सब है, परंतु यदि यह प्रश्न हो कि सभी धर्मों में उच्च धर्म कौन सा है, सबसे ऊंचा लेवल किसका है, तो है सनातन धर्म का लेवल। अन्य जितने भी धर्म है उस धर्म का आधार बहुत सूक्ष्म है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि इस संसार में सबसे बड़े तीन धर्म है, क्रिश्चियन, मुसलमान, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म। इस धर्मों के बारे में यदि चर्चा की जाए तो ये जितने भी धर्म है ये सब धर्म योग्य देश और योग्य काल और पात्र के अनुसार बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत आज से 2000 वर्ष पूर्व हुई करीबन, और मुसलमान धर्म की शुरुआत करीबन आज से 1550 वर्ष पहले हुई, और सनातन धर्म की शुरुआत जब से यह संसार बना है तब से सनातन धर्म की शुरुआत होती आ रही है। तो इस प्रकार ये मुसलमान धर्म और क्रिश्चियन धर्म सही है या गलत है, लेवल में कैसे अंतर है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। 2000 वर्ष पहले यह क्रिश्चियन धर्म की जब शुरुआत हुई उस समय जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तब उन्होंने देखा कि संसार की हालत बहुत नाजुक है, सब लोग आदिवासी की तरह, सब लोग मूढ़ हैं और सब लोग इतने अत्याचारी हैं, इतने पापी हैं, इतना भी ज्ञान नहीं है कि मनुष्य को भगवान ने वेजिटेरियन बनाया है, सब लोग गाय का वध करते हैं, मांसाहार करते हैं, यहां तक मनुष्य को भी मार काट कर खा जाते हैं। ऐसी भीषण स्थिति में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और मैंने आपको कहा था ऐसी स्थिति में यदि जीसस क्राइस्ट कहे कि आप लोग ये सब मत करो, कांदा लहसुन मत खाओ, चाय कॉफी मत पियो, यदि इतना बड़ा सिद्धांत सब लोगों के बीच में रख देते तो सब लोग मिलकर इसे ही मार डालते, आया है नया उपदेश करने वाला। इसलिए देखा कि एक साथ डायरेक्ट इतना प्रहार नहीं करना चाहिए, जीसस क्राइस्ट ने सोचा कि धीरे धीरे सबको सुधारेंगे, धर्म के स्थान पर लाएंगे। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, क्या आप पाप करते हो? ठीक है, परंतु आप एक वीक में जितना भी पाप करते हो, कम से कम संडे टू संडे आप चर्च में जाओ और चर्च में जाकर फादर के सामने जो भी पाप करते हो उनका बयान कर दो, आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। एटलीस्ट संडे टू संडे सबको चर्च में जाने की प्रणाली शुरू की, अपने पाप दोहराने की प्रणाली शुरू की। और जीसस क्राइस्ट सोचते थे कि आगे चलकर धीरे धीरे करके मैं सबको सुधार दूंगा, सबको सनातन धर्म के लेवल पर ला दूंगा। अपने बाइबल में लिखा है कि मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं, परंतु फिलहाल आप उसे समझ नहीं सकते हैं। वह बहुत कुछ बताना चाहते थे, वह क्या था? सनातन धर्म। तो धीरे धीरे वे उपदेश देते जा रहे थे, परंतु जब तक वह सबको शुद्ध करके सनातन धर्म का उपदेश दे, तब तक तो बेचारे को सूली पर चढ़ा दिया और वह चल बसे। तब क्या हुआ, उन्होंने अपने जीवन में जो जो उपदेश दिया, उस उपदेश को संकलित करके, लिपिबद्ध करके उसे शास्त्र बना दिया और उसे ही धर्म ग्रंथ बनाकर वही धर्म हो गया, वही धर्म हो गया। वास्तव में वो पूर्ण धर्म नहीं था। जीसस क्राइस्ट ने जो किया वह धीरे धीरे सुधारना चाहते थे, वो पूर्ण चीज किसी को नहीं बताए। तो यह क्रिश्चियन धर्म जो है वह सत्य है परंतु पूर्ण नहीं है। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद पैगंबर जब आए 1550 वर्ष पूर्व, उसी समय यही स्थिति थी और वे सबको सुधारना चाहते थे। तो मोहम्मद पैगंबर ने कहा, आप एक काम करो, पशुओं का वध करो, परंतु पशुओं को हलाल करके मारो। हलाल माने एक झटके में मत मारो, धीरे धीरे मारो। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार धीरे धीरे पशुओं को मारेंगे, पशुओं को तड़पते देखकर कभी ना कभी तो दया आ जाएगी और पशु वध बंद करेंगे, यह सोचा। और उन्होंने यह भी उपदेश दिया कि आप एक काम करो, ये सब कर रहे हो ठीक है, परंतु कम से कम शुक्रवार को नमाज पढ़ो, दरगाह में मस्जिद में जाओ। वे भी चाहते थे कि धीरे धीरे सबको लाइन पर ला दूंगा, परंतु सबको लाइन पर लाने से पहले ही वे चले गए और उन्होंने जो कहा सबने उसको स्टैंडर्ड बना लिया। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया था कि कोई व्यक्ति एक दिन की 50 सिगरेट पीता हो और वह डॉक्टर के पास जाए, कैंसर हो गया, डॉक्टर कहे, यदि डॉक्टर ऐसा कह दे कि सब सिगरेट बंद कर दो तो वो करने वाला नहीं है। तब डॉक्टर सोचता है कि धीरे धीरे बंद कराऊंगा। डॉक्टर कहे एक काम करो, कल से सिगरेट पीना परंतु 30 सिगरेट पीना। अब डॉक्टर की इच्छा ये नहीं है कि 30 सिगरेट भी पिए, परंतु यदि वह सब पीना बंद करवा दे तो वो बंद करेगा नहीं। इसलिए डॉक्टर ने सोचा कि धीरे धीरे करके बंद कराऊंगा, फिलहाल 30 सिगरेट पियो। फिर दूसरी बार वह व्यक्ति आया तो कहा कि आप एक काम करो, अब 20 सिगरेट पियो। अब डॉक्टर उसे धीरे धीरे करके बंद कराना चाहता था, परंतु बंद कराने से पहले ही मर गया। और मर गया तो इसने सोचा कि बस डॉक्टर कह के गए हैं 20 सिगरेट तो पीनी ही चाहिए, स्टैंडर्ड बना लिया, इसे ही आदर्श बना लिया। तो डॉक्टर चले गए और 20 सिगरेट पीने के लिए कहा था। डॉक्टर के कहने का वास्तविक रुख यह था कि धीरे धीरे करके सब बंद कर दो, परंतु ये मरीज उसकी बात समझ नहीं पाया और यह मान बैठा कि 20 सिगरेट पीना मेरे लिए कोई हानिकारक नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। वैसे ही ये मुसलमान धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद पैगंबर बहुत कुछ कहना चाहते थे, परंतु सनातन धर्म का उपदेश देने के पहले ही वे चले गए। तो चले गए तो उन्होंने जो कहा उसे ये लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया। तो उन्होंने जो उपदेश दिया वह गलत नहीं है, उस देश काल पात्र के अनुसार धीरे धीरे जो मनुष्य का आचरण बिगड़ा हुआ था, पहले उस मनुष्य को पशुओं के स्तर से मनुष्य बनाना चाहते थे, परंतु जो लोग ऑलरेडी मनुष्य के स्तर पर है, जो सभ्य मनुष्य है, उसके लिए यह धर्म की आवश्यकता नहीं, उसे तो सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ धर्म, सबसे उत्तम धर्म सनातन धर्म है। और जितने भी समाज में धर्म है, सभी धर्म में गलत कुछ नहीं है। कुछ धर्म शरीर के लेवल पर है, कुछ धर्म समाज सेवा में मानते हैं, ये सब धर्म है। परंतु ये सभी धर्मों से श्रेष्ठ धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म क्यों? क्योंकि सनातन धर्म जो है सदियों से चलता आया है, करोड़ों वर्ष से, जब से ये जीव की उत्पत्ति, भगवान ने यह सृष्टि बनाई तब से सनातन धर्म। अच्छा, सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है? सनातन धर्म का पहला अर्थ, सनातन धर्म का अर्थ यह होता है, धर्म का अर्थ होता है वह चीज जिसको अपने गुण से अलग न किया जा सके। जैसे शक्कर का गुण है स्वीट लगना, यदि शक्कर में से स्वीटपना निकाल देंगे तो शक्कर बचेगी नहीं। नमक का गुण है मीठा लगना, यदि उसमें मीठापन निकाल दिया जाए तो नमक बचेगा नहीं। वैसे ही सब आत्मा का, जीवात्मा का धर्म है प्रेम करना। यदि जीवात्मा से प्रेम करने का स्वभाव निकाल दिया जाए तो यह आत्मा बचेगी नहीं। तो वास्तव में आत्मा का धर्म है प्रेम करना, और सनातन धर्म का अर्थ है कि आत्मा सनातन है और सनातन आत्मा सनातन वस्तु से ही प्रेम कर सकती है, वे नाशवंत वस्तु से प्रेम नहीं कर सकती है। तो सनातन धर्म का अर्थ होता है सनातन के द्वारा सनातन का सेवा अथवा प्रेम करना, अथवा अर्थात सनातन आत्मा के द्वारा सनातन परमात्मा की भक्ति करना, यह है सनातन धर्म, यह है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की यदि दूसरी व्याख्या की जाए, दूसरे शब्द में यदि कहा जाए, तो सनातन का अर्थ होता है नित्य। जो धर्म नित्य बना रहे उसे कहते हैं सनातन धर्म। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं माता की सेवा करना यह है सनातन धर्म, पिता की सेवा करना सनातन धर्म, सास ससुर की सेवा करना सनातन धर्म, पत्नी की, पुत्र की सेवा करना सनातन धर्म, देश की सेवा करना सनातन धर्म। परंतु वास्तव में ये सब की सेवा करना ये कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो कभी बदले नहीं, जो एक बना रहे। जैसे आज यदि कोई अपनी माँ की सेवा कर रहा है, यदि वह मर गया तो दूसरे जन्म में दूसरी माँ मिलेगी, तो जिसके प्रति धर्म का पालन करा है वह तो बदल रहा है, तीसरे जन्म में तीसरी माँ मिलेगी, चौथे जन्म में चौथी। अब जो बदलता रहे वह सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म अर्थात कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं, आज कुछ लोग मानते हैं कि देश सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म, परंतु भारत देश की सेवा कर रहा है और मर गया और पाकिस्तान में जन्म हुआ, तो आज भारत की सेवा कर रहा है कल पाकिस्तान की सेवा करेगा, तो ये कोई धर्म है? ये कोई सनातन धर्म है? आज यहां की सेवा कल वहां की? सनातन धर्म का अर्थ है जो नित्य बना रहे, एक की ही सेवा हो। और वास्तव में सनातन धर्म का अर्थ होता है सनातन अंश परमात्मा भगवान की भक्ति करना, क्योंकि भगवान जो है सब देश सब काल में एक समान बने रहते हैं। आज कोई कृष्ण की सेवा करता है तो आने वाले जन्म में भी कृष्ण की सेवा कर सकता है, 10 जन्मों के बाद, 100 जन्मों के बाद, 1000 जन्मों के बाद भी वो कृष्ण की सेवा कर सकता है। इसे कहते हैं सनातन धर्म। तो ये जो सनातन धर्म है सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और बाकी के जो धर्म है इस सनातन धर्म के नीचे के लेवल के धर्म है। कुछ लोग नर्सरी में है, कुछ लोग फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, सब लोग धीरे धीरे करके, भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, ये अलग अलग धर्म में जो है ना, भगवान कहते हैं बहु नाम, बहुत बहुत जन्म के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब उसे ज्ञान होगा तब मेरे पास आएंगे और सोचेंगे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण ही सर्वम इति, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। व्यक्ति ऐसा जब समझने लगेगा तब वो महात्मा हो जाएगा। और हे अर्जुन, ऐसा महात्मा मेरे लिए बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ है। तो इस प्रकार से भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण की भक्ति करने वाला महात्मा है, महात्मा है, सबसे बड़ा भक्त है, सबसे श्रेष्ठ है। तो वास्तव में भगवान की निगाह में, भगवान की नजर में अच्छे बनना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अन्य किसी के नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान और धर्म के बारे में चर्चा हुई, और कल भी धर्म के बारे में बताया गया था। अब इसके बाद प्रकृति, काल और कर्म के बारे में मैं चर्चा करूं, उनके पहले भगवान, भगवान के अवतार और धर्म के विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो 10 मिनट आप पूछ सकते हैं।
वेदों में कहा गया है कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म भगवान से ही आता है। हाँ। तो ये जो है, तो ये धर्म की स्थापना करते, तो ये धर्म कैसे हो सकते
हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। आप जो श्लोक बोले धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, इसका अर्थ ये नहीं कि धर्म भगवान से आता है। प्रणीतम का अर्थ होता है प्रणेता। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, प्रणीतम मीन्स प्रणेता, उसको बोलने वाला, कहने वाला या बनाने वाला। तो भागवत में एक प्रश्न उठा, धर्म क्या है, धर्म का स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है? तो कहते हैं धर्म का स्टैंडर्ड भगवान फिक्स करते हैं। धर्म तो साक्षात भगवन प्रणीतम, धर्म जो है, धर्म के विषय में भगवान ही बता सकते हैं। इसका अर्थ ये है, धर्म के विषय में संसार का साधारण आदमी नहीं बता सकता है। किसी को भी पूछ दिया जाए कि धर्म का अर्थ क्या है, तो धर्म का स्टैंडर्ड साधारण, वहां स्टैंडर्ड की बात की गई है कि धर्म का स्टैंडर्ड कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनाता है, भगवान बनाते हैं। यह है, ये सत्य है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, यह है सनातन धर्म, यह है श्रेष्ठ धर्म। और उस भक्ति, भक्ति का अर्थ होता है कृष्ण की भक्ति, अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना, ठीक है, कृष्ण की भक्ति करना, यह है सनातन धर्म, कृष्ण को प्रसन्न करना। अब कृष्ण को, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे वो तो हम जानते नहीं है। आप देखिए, यहां पर कोई व्यक्ति आए और मैं आपको कहूं कि इसको प्रसन्न करो, तो कोई नाचेगा, कोई गाएगा, कोई भोजन लाएगा, हम कैसे जाने कि वो प्रसन्न कैसे हो? तब हम उसे कहेंगे कि भाई आप बताइए आप प्रसन्न कैसे होंगे। तब वो लिस्ट बनाता है कि मेरा कोई चरण दबाएगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, मुझे कोई भोग लगाएगा तो। वैसे सनातन धर्म का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। अब भगवान कैसे प्रसन्न हो, तो प्रणीत भगवान को बोलना होगा। तो भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे भोग लगाइए मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरा नाम लीजिए मैं प्रसन्न रहूंगा। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये भगवान स्वयं बनाते हैं।
जैसे कुलदेव है या गुरुदेव है या शिव जी का कोई भी अवतार है, उसको सबको मुक्ति मिलती है? जैसे भगवान वरदान देते, वो भी वरदान देते, तो मुक्ति सबको मिलती है मनुष्य को?
क्या बोल, किसको? हाँ ठीक है बैठिए। प्रभु जी का प्रश्न है कि कोई यदि देवी देवताओं की भक्ति करता है तो उसके मुक्ति मिलती है। भगवद गीता में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वह देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, स्वर्ग में। भूतों की भक्ति करने वाले भूतों के लोक में, पितरों की भक्ति करने वाले पितृलोक में, और कृष्ण की भक्ति करने वाले गोलोक में।
और राधा कृष्ण जी तो कैसा हम करें उनको? हा? हमारे पिताजी बनाए हैं मंदिर। हाँ। तो मंदिर में स्थापित है उनका, राधा कृष्ण जी और शिव शंकर जी हैं, तो कैसा उनको करो, बाहर क्या अंदर ही साथ में?
बाद में प्रवचन के बाद मिलिए मुझे, मैं आपको पूरा डिजाइन दे दूंगा। वहां प्रभु जी का प्रश्न है।
धन्यवाद प्रभु। प्रभु जैसे आपने बताया कि जो कृष्ण भक्ति है वो सनातन धर्म है, और जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद पैगंबर ने देश काल पात्र के हिसाब से प्रचार किया, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान ने शायद उनको प्रचार करने के लिए भेजा होगा। लेकिन आपने ये भी बताया कि कृष्ण भक्ति वो सनातन धर्म है, और क्रिश्चियन धर्म जो है 2000 साल पहले आया और मुस्लिम धर्म 1500 साल पहले, जबकि प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले पश्चिम बंगाल में आए, और शास्त्र ये भी बताते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है वो पहले भारतवर्ष हुआ करता था जिसका नाम इलावृत था। तो सनातन धर्म सब लोग पालन करते थे, यहां तक कि युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती महाराज थे। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी जो इलावृत थी पहले, तब सारी पृथ्वी कृष्ण भक्ति में मानती थी और वेद और शास्त्र को मानती थी। तो फिर ऐसा क्या कारण हुआ जैसे जीसस क्राइस्ट को ऐसे लोगों को समझाना पड़ा जो वेद को नहीं मानते थे, और ऐसा क्यों हुआ जबकि सब लोग पहले सनातन धर्म का पालन करते थे, ऐसा क्यों हुआ कि लोग ऐसे पिछड़ने लगे? जैसे कि चाइना अलग हो गया, चाइना भी कुछ फॉलो नहीं करता, तो भगवान बुद्ध है सिद्धार्थ, उन्होंने प्रचार किया, फिर जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद पैगंबर, फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेट क्यों हुआ, किस लिए?
बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रभु जी का कहना है कि पहले वास्तव में सब लोग सनातन धर्म का पालन करते थे, राम राज्य में यहां तक युधिष्ठिर महाराज, यहां तक परीक्षित महाराज के राज्य तक सब लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, क्योंकि उस समय भारत पूरी पृथ्वी को कहा जाता था, ये अजनाभ वृष पहले इनका नाम था, और पूरी पृथ्वी भारत थी, और परीक्षित महाराज के इस राज्य में सब लोग कृष्ण की भक्ति करते थे। तो प्रभु जी का कहना है कि उस समय सब लोग सनातन धर्म का पालन करते थे, और 2000 वर्ष पहले ऐसी क्यों स्थिति हो गई जिससे सनातन धर्म का पालन करना बंद हो गया? तो सबसे पहली बात कि युग बदल गया, द्वापर युग से कलयुग आ गया, और कलयुग आते ही कलयुग के प्रभाव शुरू होने लगे। तो सबसे पहला मुख्य उत्तर तो ये होगा कि कलयुग के प्रभाव के कारण वो सनातन धर्म धर्मियों का लुप्त हो जाना होने लगा, ये बात है। और चैतन्य महाप्रभु आए इसी गंभीर स्थिति को देखकर कि जो पहले सनातन धर्मी थे आज धीरे धीरे सब लुप्त हो जा होता हुआ जा रहा है, और वो भी कलयुग के प्रथम चरण में, तब धर्म का स्टैंडर्ड देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और सनातन धर्म का प्रचार किया, ये है। तो मुख्य बात यही है कि कलयुग के प्रभाव के कारण वह सनातन धर्म जो पहले पूरी पृथ्वी पर था वो लिप्त होता गया, ये बात है। और किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हरिदास ठाकुर प्रभु जी जब वो मुसलमान लोगों को प्रचार करते थे, तब वो बताते कि मतलब अल्लाह ईश्वर सब एक है, नाम मात्र भेद है, मतलब अल्लाह ईश्वर है, ऐसे वो बता देते। अगर कोई अल्लाह का नाम लेता है तो क्या वो गलत है? और अल्लाह की भक्ति करते भक्ति करके क्या उसे मुक्ति मिल सकती है?
तो ठीक है ना, अल्लाह ईश्वर एक ही है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह का नाम क्या है?
कृष्ण, अल्लाह कृष्ण है।
हाँ।
तो मतलब कोई अल्लाह का नाम लेता है तो उसे मुक्ति मिल सकती है?
अल्लाह का नाम लेता है तो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अल्लाह का नाम क्या है मैं आपको पूछता हूँ।
अल्लाह कृष्ण है ना,
अल्लाह का नाम क्या है?
वो लोग मतलब ऐसा किसी डीटी को वर्शिप नहीं करते, मतलब अल्लाह मानते हैं ना सिर्फ, तो मतलब उनका कोई स्पेसिफिक डीटी रहता नहीं है, मतलब वो लोग मोहम्मद पैगंबर का जो था उसी को वो ही मानते हैं। तो अल्लाह कौन
है वास्तव में? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। वास्तव में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर देनी चाहिए, अल्लाह जो है नाम नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये अल्लाह जो है और गॉड जो है ये नाम नहीं है। अल्लाह जैसे हम भगवान बोलते हैं, भगवान भगवान भगवान, वैसे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन भगवान का नाम क्या? कृष्ण। ऐसे पूछा जाए अल्लाह का नाम क्या है? कृष्ण। ये है, इसलिए हरिदास ठाकुर की युक्ति जो है कि अल्लाह चाहे कृष्ण सब एक ही है, अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह का नाम कृष्ण ही तो हुआ। समझ में आई बात? थोड़ा टेक्निकल। पूछे
हरे कृष्णा
मराठी में हमारी दशा उतार है तो बहुत मलेच मर्शन करशी कलंकी केशवा बौद्ध कलंकी कलयुगी झाला अधर्म ऐसा क्यों बोले कलंकी महोत्सव क्यों बोले
क्या क्या
मलेच मलेच भगवान ने मलेच अवतार लिया है ना मलेच और मलेच अवतार भगवान दशा अवतार में भगवान ने मलेच अवतार लिया
मलेच
हाँ
मच्छी
हाँ
मत्स्य अवतार ना
मलेच में दशा अवतार में दो सेवन लास्ट की दो अवतार है ना भगवान के बौद्ध और मलेच वो किस लिए भगवान ने अवतार है उसको कलंक क्यों कहा गया है
अच्छा बौद्ध और कौन सा
दो अवतार हुए ना बौद्ध और पहला मलेच
बौद्ध तो समझ गया इसका उत्तर मेरे पास है दूसरा किसका
मलेच मलेच बोले
मलेच है
हाँ ऐसे दो दशा अवतार
मुसलमान ठीक है मैं जवाब दे रहा हूँ ठीक है वो दूसरा जो भी है बुद्ध को क्या कहते हैं कलंक है ना हाँ तो सही बात है ये बुद्ध जो है भगवान के अवतार है परंतु भगवान का बुद्ध अवतार लेने के पीछे कुछ विशेष प्रयोजन था प्रयोजन यही था कि उस समय हमारे संसार की स्थिति ऐसी थी कि सब लोग वेदों का सहारा लेकर वेदों में कर्मकांड मार्ग का वर्णन हुआ है स्पेशल उसी को लेकर सब लोग नर बलि और पशु बलि देते थे और उस पशु बलि की हिंसा से अपनी इंद्र तृप्ति करते थे और सब जगह पर ऐसा बन गया और जब कोई उसे ना कहता तो कहते वेदों में लिखा है वेदों में पवित्र मंत्रों के साथ ये करना चाहिए परंतु अपनी इंद्र तृप्ति के लिए न तो मंत्र जानते न शुद्ध ब्राह्मण है और पशु बलि जीव हिंसा प्रारंभ हो गई और उसी समय भगवान को एक अचानक अवतार लेना पड़ा और अवतार लेकर भगवान ने यह कहा कि ये सब वेद गलत है तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा और वेद गलत है यह कहना पड़ा ताकि ये सब लोग वेदों का सहारा लेकर यज्ञ कर रहे थे वो बंद कराना था तो भगवान ने कहा वेद गलत है तो सबको यह जीव हिंसा भगवान ने बंद कराई परंतु फिर आगे चलकर जो मायावाद इत्यादि थे उन्होंने इस बौद्ध धर्म को पकड़ लिया कि ये तो भगवान ने कहा है वेद गलत है छोड़ो वेद को शास्त्र को छोड़ो अपना मनमाना जीवन बिताओ जिसे बौद्धिष्क कहा जाता है परंतु बौद्ध धर्म के बौद्ध भगवान का यह विशेष प्रयोजन था ये ठीक है और कोई प्रश्न इसलिए भगवान को कलंक कहा जाता है
हरि बोल विष्णु के दस अवतार होते हैं तो कृष्ण अवतार का ही ज्यादा महत्व क्यों विष्णु के भक्ति करो ऐसा क्यों नहीं बोला जाता
ठीक बहुत अच्छा प्रश्न है कहते हैं कि विष्णु के दस अवतार अवतार अनेक हैं 24 अवतार तो अवतार की भक्ति करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं कृष्ण की भक्ति क्यों कहते हैं क्योंकि ये जितने भी अवतार हैं ये सभी अवतार भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं वैसे मैंने आपको कहा कि विष्णु से प्रकट होते हैं परंतु अल्टीमेट विष्णु कृष्ण से प्रकट होते हैं इसलिए यही हुआ सब सारे अवतार कृष्ण से प्रकट हुए तो यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो उसमें सारे अवतारों की भक्ति हो जाती है यदि आप एक एक बार कृष्ण का नाम लिए तो उसमें नरसिंह वामन वराह सब का नाम आ गया तो बेस्ट यही है कि कृष्ण का नाम लेकर सभी अवतारों को प्रसन्न किया जाए और केवल अवतार ही नहीं आप कृष्ण का नाम लेते हो कृष्ण की भक्ति करते हो तो भगवान के सभी अवतारों की भक्ति हो गई देवी देवताओं की भक्ति हो गई पितरों की भक्ति हो गई संसार में सभी मनुष्यों की भक्ति हो गई भागवत में आया है यथा तरो मूल निशेच नैन तृप्यंति तस्कंद भुजो पशाखा प्राणोपहाराश यथे इंद्रियाणम तथेव सर्वा अर्हणम अच्युतेजिया अच्युत इजिया भगवान श्री कृष्ण की यदि कोई भक्ति करे तो वह उस भक्ति की समान है वे दृष्टांत देते हैं जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालना आप देखिए वृक्ष में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मूल होता है डालियां होती हैं पत्ते होता है फूल होता है फल होता है परंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वृक्ष की जड़ में मूल में पानी डालता है वृक्ष के मूल में पानी डालने से डाली पत्ते फूल और फल सब जगह पर पहुंच जाता है परंतु मूर्ख जो होते हैं वो डाली के ऊपर पानी डालते हैं पत्ते के ऊपर पानी डालते हैं फूल के ऊपर पानी डालते हैं बुद्धिमान को चाहिए उसके मूल में पानी डालें ठीक उसी प्रकार इस संसार में सभी जीवों के, सभी देवताओं के, सभी अवतारों के रूट है, मूल है मात्र कृष्ण। इसलिए कृष्ण की भक्ति यदि कर दिया जाए तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सब अवतार भी, सब देवता, सब पितृ और सब मनुष्य। इसलिए कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है, इसीलिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी पूछ रही है हमारा जैन धर्म कौन सा है।
वो भी गलत नहीं है, परंतु लेवल थोड़े नीचे पर है, क्योंकि सनातन धर्म नहीं है वो, उनका लेवल नीचे है। देखिए मैं यहाँ बैठकर किसी धर्म के बारे में नहीं बोलता हूँ, ये तो बड़े धर्म है इसके लिए मैं उनके बारे में कहता हूँ, लेकिन श्रेष्ठ तो सनातन धर्म है। जैन धर्म गलत नहीं, परंतु लेवल थोड़ा नीचे है, लो लेवल है यह। पूछिए, हाँ माइक दीजिए। अरे बोला आप बैठ क्यों जाते हैं, दो माइक है, एक आगे रखिए एक पीछे रखिए, एक पीछे रखिए माता जी के पास।
बौद्ध धर्म में आत्मा का अस्तित्व माना नहीं है, आत्मा है करके। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनका स्वीकृति किया, ऐसा हमको लगता है कि बहुत स्टडी करके, क्योंकि वो अपना भारत का संविधान भी बनाए और बहुत स्टडी करके स्वीकार किया होगा, ऐसा कभी कभी दिल में आता है। तो इसमें और बाबा साहब बोले थे कि पूरा भारत, हम भारत बौद्धमय करेंगे कुछ भी दिन।
अच्छा।
हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कभी दिल में, ऐसा आता है कि बहुत सारा स्टडी करके वो स्वीकार किया होगा।
तो उसके बोलने से क्या हो गया, सब लोग कहते हैं पूरी दुनिया को जला दूंगा, तो बोलने से क्या जल जाती है ना, कुछ नहीं होता है, गलत है। बहुत भगवान ने जो कहा है उनको नहीं मानना है।
प्रभु जी हरकृष्णा, जो कली का जो प्राकट हुआ इस पृथ्वी पर, वो क्या भगवान की इच्छा से हुआ या?
वो तो काल के अनुसार वो चलते रहता है, सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग।
कली में सबके आचरण बिगड़ जाते हैं, या जो भी आदमी मनुष्य पूरा जानवर बन जाता है, तो फिर ऐसा क्यों भगवान करते फिर?
अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न भागवत में 88,000 ऋषि मुनियों का था, आप भी उनमें से एक लगते हैं। भागवत में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि महाराज परीक्षित इतने चक्रवर्ती सम्राट, इतने समर्थ राजा थे, यदि चाहते तो आज कलयुग न होता, हम लोग सतयुग में बैठे होते। हमने देखा भागवत के प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित तलवार लेकर कलयुग को मारने की तैयारी, कलयुग शरण में गिर गया, चरणों में आ गया। तो वहां पर प्रश्न उठा कि परीक्षित महाराज यदि चाहते तो कलयुग को आने न देते, परंतु महाराज परीक्षित ने कलयुग का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित ने देखा कले दोषे निधे राजन, कलयुग में बहुत दोष है, दोषों का सागर है। अब देखिए कदम कदम पर दोष पाप हो रहा है, परंतु अस्ति एक महान गुण है। ये सभी दोषों के बीच में महाराज परीक्षित ने देख लिया कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, और वह गुण क्या है? अन्य सब युगों में बहुत वर्षों तक, बहुत जन्मों तक और बहुत मेहनत करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, और वह कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, है कि नहीं बेनिफिट? इसलिए स्वागत किया, इसलिए आने दिया। आप विचार कीजिए, यदि सतयुग में होते तो एक पांव पर खड़े रहकर ध्यान करके तपस्या करके मर गए होते, फिर भी भगवान न मिलते। और कलयुग में केवल नाम लीजिए, महामंत्र जपिए, भगवान की प्राप्ति, इसलिए भगवान ने आने दिया।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी के रूप में द्वापर युग में आए, रूप में हा? तो उसके पहले सतयुग, त्रेता युग, सतयुग में वो भले ही श्री विष्णु और श्री राम के रूप में भगवान ही थे, लेकिन उनका जो रूप था वो सतयुग और त्रेता युग में क्या प्रचलित नहीं था? मतलब वो जो फीचर, मतलब रूप जो श्री कृष्ण जी का है, मुरली पकड़ के वगैरह, वो रूप त्रेता युग और सतयुग में प्रचलित नहीं था?
था था था, भगवान का रूप प्रचलित था, क्योंकि भगवान एक बार नहीं आते हैं, बार बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज कृष्ण का रूप फेमस है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए तो कलयुग में फेमस है, सतयुग में भी फेमस होगा, त्रेता युग में भी फेमस होगा, क्योंकि भगवान के अवतार नित्य चलते रहते हैं तो फेमस होते हैं, सब लोग जानते हैं ये है फेमस। अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र के वहां विष्णु जी का विग्रह था, तो अन्य अन्य अवतार फेमस होते हैं, यद्यपि शास्त्र में पढ़ने में हमें नहीं आता है, क्योंकि शास्त्र में सब कुछ नहीं बताया गया है ना। मैं आपको कहूं आप हैरान हो जाओगे, जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में अपनी टीका में लिखते हैं कि वास्तव में श्रीमद् भागवत में शत कोटि 100 करोड़ श्लोक हैं। भागवत कितना बड़ा ग्रंथ है जानते हैं? श्रीमद् भागवत में 100 करोड़ श्लोक हैं, और वास्तव में ये भागवत की रचना वैकुंठ में भगवान नारायण ने की है। भगवान नारायण ने अपने मुख से इस भागवत की रचना की, इसमें 100 करोड़ श्लोक, परंतु वेद व्यास जी ने इसे कॉम्पैक्ट बनाकर उसमें से मुख्य मुख्य लेकर हम सबको 18,000 श्लोक में दे दिया। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ श्लोक होता तो आज हम जो खोल के देखते भी हैं वह देखते भी नहीं, इतना बड़ा देख कर अटैक आ जाता है। कलयुग में उम्र कम है, मंद बुद्धि है, तो इस प्रकार हो सकता है कि शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उल्लेख नहीं है, नहीं लिखा है, परंतु है कि त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह उनकी यादें होती हैं, करते हैं। और कोई प्रश्न?
कि शास्त्र है, आपने कहा कि पहले जो शास्त्र थे वो श्रुति में थे और बाद में व्यास मुनि ने उसको लिपिबंद किया, और तो रामायण जो था वो तो त्रेता युग में लिखा गया, तो लिखा गया वो कैसे, वो कैसे लिपिबंद?
लिखा नहीं,
वो भी श्रुति में थे,
वो भी श्रुति में था, वेद व्यास जी ने लिखा। यद्यपि रामायण वाल्मीकि कृत है, रचना वाल्मीकि ने की, परंतु लिखा वेद व्यास जी ने रामायण भी। ये
हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्ण।
ये जो भागवतम है ये पृथ्वी लोक पे है, तो स्वर्ग लोक में भी है क्या वो भागवत देवलोकों के लिए?
स्वर्ग लोक में भागवत है परंतु पढ़ने का मौका नहीं है, जैसे हमारे घर पर भी भागवत है परंतु एज इट इज बॉक्स पैक सील पैक, यहाँ तो फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जब दुख आता है जीवन में तो पढ़ लेते हैं, और स्वर्ग में तो दुख नाम की वस्तु ही नहीं है, इसलिए भागवत कोई खोलता ही नहीं है, है। और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रह्म विष्णु महेश इससे उत्पत्ति हुई है, मतलब जनरेशन जो गॉड जनरेशन जो बोलते हैं कंप्लीट, मुझे अभी आपने जो बताया कि कृष्ण से ये उत्पत्ति हुई है, कृष्ण से सब अवतार हो गए, तो हमें जब स्कूल में पढ़ाया जाता है
गलत,
जो कि विष्णु ने जन्म लिया, विष्णु ने कारागृह में जाकर देवकी के से बात करके उनके गर्भ में कृष्ण का जन्म हुआ, ये जो हमें बताया जाता है तो ये टोटली रॉन्ग बताया जाता है।
नहीं, ये सही है।
फिर ये विष्णु जो कृष्ण पहले से ही है, तो फिर ये विष्णु कहाँ से आ गए?
तो मैंने आपको कहा ना, फिर से आप देखिए, कृष्ण से बलदेव जी,
बलदेव जी कौन है?
बलदेव जी कृष्ण के फर्स्ट एक्सपांशन,
और वो जो भाई है वो कौन है?
वही बलदेव जी हैं। कृष्ण के भाई वही बलदेव जी हैं।
अच्छा, वही कंफ्यूजमेंट हो जाता है ना इसका। हाँ, तो आगे फिर
अब आगे बताऊं?
हाँ बताइए
जरा। अच्छा, बलदेव जी से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ठीक है,
बराबर है।
और फिर वो 12 होकर महासंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षायी विष्णु, और गर्भोदक्षायी विष्णु से शिरोदक्षायी विष्णु। ये जो शिरोदक्षायी विष्णु है उससे सारे अवतार होते हैं, नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि, ठीक है। और ये कृष्ण है, कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, और बाकी जो है उनके अवतार है, ठीक है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी के सब उनके अंश और कला है, अवतार है।
ये इम्पोर्टेंस ही कृष्ण को इम्पोर्टेंस ही ज्यादा है।
हाँ, ज्यादा है इसी तत्व के अनुसार।
तो जो हमें सिखाया जाता है,
हाँ,
अपने को जो स्कूल में हमें बताया जाता है कि विष्णु से सब अवतार होते हैं,
हाँ,
दश अवतार विष्णु अवतार है,
हाँ,
तो वो शिरोदक्षायी विष्णु से अवतार होते हैं।
यस,
बराबर है,
विष्णु से सब अवतार होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
हाँ,
परंतु विष्णु का अवतार कृष्ण से होता है, ये जोड़ देना है।
मतलब वो पहला कृष्ण अवतार है, और फिर से अगर देवकी के गर्भ में विष्णु ने
अच्छा देवकी के गर्भ का जो है मैं आपको बताऊं, शायद आपने नहीं सुना होगा, कई भक्तों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी के पास समय बहुत कम था, इसलिए इस तत्व को हमारे जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में, कवि कर्णपुर ने आनंद निंदावन चंपू में बहुत इस तत्व को क्लियर किया है। वास्तव में देवकी के गर्भ से जो भगवान प्रकट हुए वो विष्णु तत्व थे, भगवान विष्णु थे, ठीक है। और उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ जो साक्षात कृष्ण थे। मैं जो बात कर रहा हूं ना आपको कि जो साक्षात कृष्ण है, वो साक्षात कृष्ण वास्तव में यशोदा के गर्भ से जन्म लिए और देवकी के गर्भ से विष्णु तत्व जन्म लिए, चतुर्भुज। इसलिए तो आप देखिए जैसे ही जन्म हुआ शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण करके खड़े हैं, ठीक है। और उसका तत्व आपको बताऊं तो पूर्व जन्म में अदिति और कश्यप थे, देवकी और वसुदेव, और अदिति और कश्यप ने, आप देखिए भागवत, भगवान विष्णु की आराधना की थी और भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और कहा था आपके ऐसा पुत्र चाहिए। उसके पहले जन्म में मनु और शत्रुपा नहीं, प्रिश्नी और सुतपा थे, उन्होंने भी भगवान विष्णु की आराधना और भगवान विष्णु को कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो वास्तव में ये दोनों जन्म के को देखकर ये निश्चित होता है कि वहां भगवान विष्णु का प्रकट किया हुआ था।
हाँ, उस वक्त देवकी माता जी ने कहा था ना कि भाई ये मेरे को चार हाथ वाले नहीं चाहिए, मेरे को छोटा सा बालक चाहिए। भागवतम में आया कहीं तो उसका उल्लेख है, बराबर है ना प्रभु जी?
बराबर।
तो अभी वो जो विष्णु वहाँ पे जन्म है, कृष्ण जन्म है, तो वो कृष्ण यहाँ पे ट्रांसफर कभी हो गए?
हाँ, अब देखिए कि अब मथुरा में विष्णु तत्व का जन्म हुआ है और वहां बजेंद्र नंदन साक्षात कृष्ण का जन्म हुआ। अब वसुदेव जी जब ये कृष्ण को लेकर गए, यहां से विष्णु तत्व को लेकर गए और यशोदा मैया के पास पहुंचे, तो वहां पर दो का जन्म हुआ था, कृष्ण का और योग माया का। लेकिन वसुदेव जी को कृष्ण नहीं दिखाई दिए, जैसे ही अपने विष्णु तत्व बालक को रखे योग माया को लेकर चले गए। और यहां भगवान श्री कृष्ण, वजेंद्र नंदन कृष्ण और विष्णु, ये दोनों एक हो गए। अब देखिए ये सारी बात चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्लियर कहते हैं। वे वहां पर लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज तक किसी को नहीं मारे, एक स्टेटमेंट है शास्त्र का। अब आप देखिए इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, वो तो जन्म से ही मारने लगे पूतना अगासुर बकासुर, और वेद का ये स्टेटमेंट है कि कृष्ण ने आज तक किसी को नहीं मारा। तो वास्तव में कृष्ण का काम है ही नहीं मारना, कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण मात्र प्रेम करना जानते हैं। अब मारने का काम किसने किया, विष्णु तत्व जो थे है उन्होंने मारा सबको। अब आप देखिए और एक शास्त्र की एक युक्ति है, वृंदावनम परितज्यम पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं जाते, वृंदावन को छोड़कर भगवान कभी नहीं जाते, ये आज भी हम सुनते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है वह तो मथुरा चले गए थे। अब देखिए ये दोनों एक साथ में है, जब अक्रूर जी लेने के लिए आए रथ पे सवार होकर जा रहे थे, तब कृष्ण ने कहा चाचा जी मुझे यमुना में अंतिम बार स्नान करना है। तो भगवान श्री कृष्ण यमुना में उतरे और यमुना में उतरे तो जो बजेंद्र नंदन कृष्ण थे वो यमुना में ही रहे और जो मथुरा से वसुदेव जी लाए गए थे वो बाहर निकल गए। और यह भी बात भागवत में बताई गई है, अक्रूर जी जब स्नान किए तो अंदर भी कृष्ण को देखे और बाहर भी कृष्ण को देखे, यहां पर प्रूव हुआ। और मथुरा के कृष्ण मथुरा में चले गए, वृंदावन के वृंदावन में रहे। बोली हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यह गुड तत्व भक्तों के संग में बैठकर वरिष्ठ भक्तों से मिलकर ऐसे तत्व की, और भी कृष्ण तत्व बहुत विशाल है, सब चर्चा होनी चाहिए। पूछिए
प्रभु जी एक बात, अभी जो हमारा जो धर्म है अभी सनातन धर्म, ये बहुत पुराना धर्म है, मगर अभी 1500 साल या क्रिश्चियन धर्म जो आए उन्होंने हम पर डोमिन क्यों किया, जो आने के बाद में कि भाई सनातन धर्म, अभी हिंदू धर्म का प्रचार होता ही नहीं है, अभी वो खत्म फिनिश होना है। और आज आके जग भर में मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा है, इस्लाम ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ये इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर अपने में कहां से कमी है कि हम लोग पीछे रह गए?
बहुत सुंदर प्रश्न है, बस अब आप, मैं बताऊंगा। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है और सबसे सच्चा धर्म है, सिद्धांत भी परफेक्ट है, लेकिन हमसे ज्यादा प्रचार मुसलमानों का और क्रिश्चियन का है, ऐसा क्यों? हमें क्या कमी है? हमें यही कमी है कि हम गलत युग में प्रचार कर रहे हैं। यदि हम लोग सतयुग में प्रचार कर रहे थे तो करोड़ों लोग हमारे गीता कोर्स में बैठे होते। ये युग गलत है, ये कलयुग जो है गलत लोगों को जल्दी सपोर्ट करता है और अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, समझे? जो अच्छा प्रचार करेंगे, जो शुद्ध प्रचार करेंगे, उसको कोई सपोर्ट नहीं, और जो गलत आप शुरू कर देंगे, जैसे मैं यहाँ गलत शुरू कर दूं थोड़ा बहुत 19-20, तो आप देखिए अब लाइन लग जाएगी ऊपर नीचे सब लोग, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है ना, कलयुग सपोर्ट कर रहा है, ये है इसलिए।
आपने जो बताया है ना, अरे वो भीम के हाथ से भी कलयुग बच गया था, पांडव में अपने व्यास जी के इसमें लिख दिए ला है, जो पांडव स्वर्गारोहण जा रहे थे ना, तो द्रौपदी के जो को वो पानी का प्यास में उसको घेर लिया था कलयुग ने। अच्छा, तो भीम को बांध के गया था, अपने शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तो जब भीम ने कड़ी को पकड़ा और इतना मारा अभी मारा, तो फिर अपना धर्मराज बोला कि धर्मराज कलयुग क्या बोला कि मेरे बता, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे आप बोल दो मेरे को, लेकिन मारो मत मेरे। फिर धर्मराज बोले कि जरा ठहरो, बोले समझे तुमने, तो ये क्या बोले, सब मेरा कलयुग में जो सब आप जो बता दिए ना, तो वो छह मेरी खाई एक ना अंदर युग ना अंदर छह महीने के अंदर, लेकिन मैं उसका दान करने देता ही नहीं हूँ, ये मेरा काम है नहीं, लेकिन उसको ईश्वर प्राप्ति हो जाए। और दूसरी बात, मेरे याद अंदर कि एक एक रुपया कोई पुण्य करे ना तो उसका 1,000 रुपया लिखा जाता है। और तीसरी बात समझे ना, कि एक लड़की का जो कन्यादान करे तो उसको 7.5 यज्ञ का फल हो जाता है।
अच्छा,
ये महाभारत के अंदर है।
धन्यवाद,
बराबर
ठीक, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है?
प्रभु जी, अभी आप बोले ना कि कृष्णा यमुना में, तो फिर भी गोपी का सब जब कृष्ण गए तो क्यों ऐसा करने लगे कि बाबा भगवान गए चले गए, तो फिर प्रगट कैसे क्यों नहीं हुए जब गोपी का बीच में, जब गोपी वो लोगों ने ये क्या बोलता अपने ना, वियोग किया बोलते ना अपने ना, क्या मतलब हिंदी हिंदी में क्या मतलब,
मैंने यहाँ पर इसका उत्तर नहीं बताया।
विरह किया गोपी ने क्यों?
क्योंकि भगवान को, बैठ जाइए माइक दे दीजिए, भगवान चाहते तो गोपियों के साथ रहते हैं, लेकिन भगवान ने क्यों विरह वहां पर सहन किया, ऐसे क्यों विरह में रहे? विरह में भी एक आनंद है कि नहीं? और इसी परोकिया विप्रलम्ब रस का आस्वादन करने के लिए तो भगवान आए थे। और हमारे पुरुषों को ज्यादा अनुभव होगा, विरह में आनंद है कि नहीं? पत्नी मायके चली जाती है तो आनंद आता है कि नहीं?
हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, हम ये आत्मा है, तो ये आत्मा आती कहां से है? हम जब घर में रहते हैं हमारा शरीर बनता है, तो ये आत्मा आती कहां से? क्या भगवान इसे भेजते हैं? क्या हमें वो तत्व होता है 10-20 आत्मा पैदा करने की? क्या हमारे अंदर ही आत्मा है कि हम एक आत्मा है कि दो आत्मा है कि 10 आत्मा है?
ये आत्मा का स्रोत परमात्मा है, ये आत्मा का प्राकट्य परमात्मा से होता है, यही है। भगवान से एक साथ 1,000,000,000,000 संख्या में आत्माएं प्रकट होती हैं, और प्रकट होते ही सबसे ज्यादा आत्माओं की इच्छा होती है कि हम भगवान की सेवा करें। जिनकी इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की, भगवान के धाम में चली जाती है। और कुछ ऐसी आत्मा होती है जो चाहते हैं हम खुद भगवान बने। अब देखिये 99% आत्मा भगवान से प्रकट होकर भगवान के धाम में चले गए, हम 1% के लोग यहाँ फंसे हैं, वो भी कितने सारे हैं, आप विचार करो भगवान के धाम में कितने होंगे। ये ठीक है, पूछिए लास्ट लास्ट पूछिए, फिर बहुत कुछ बाकी।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
तो जी, कल आपने बताया कि भागवतम के दूसरे स्कंद में ऐसा कहा है कि ब्रह्मा जी ने जब जीवों को प्रकट किया उनके कार्य के अनुसार उनको सब योनि में डाल दिया, तो जब उनको प्रकट किया तो उन्होंने तो कोई कर्म किया नहीं था। हाँ। तो फिर उनको कैसे फिर योनि प्राप्त हुई?
हाँ, जैसे अभी युग चल रहा है, मान लो कि कुछ वर्षों के बाद प्रलय होना है, तो जैसे ही प्रलय होगा तो ये सब का विनाश हो जाएगा, सब शरीर का, सब ब्रह्मांड का। तो ये जितनी भी आत्माएं हैं उसको एक जगह पर रखा जाएगा और यहाँ सब विनाश 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 होगा। फिर से भगवान सृष्टि उत्पन्न करेंगे, ब्रह्मा जी डिजाइन करेंगे, सब करेंगे। फिर जो आत्मा को होल्ड में रखा है, जो अभी कर्म किए हैं, वो कर्म के अनुसार फिट कर देते हैं। ठीक है, ओके, हम प्रारंभ करते हैं मां मंत्र से। पूछ लीजिए लास्ट।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
मेरा एक अलग सवाल है, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिए हैं, लेकिन एक कलयुग में आए साई बाबा हो गए, स्वामी समर्थ हो गए, जैसे सेगांव के गजानन महाराज हो गए, ये जो सिद्ध पुरुष है, ये मानव धर्म के लिए आए हैं, ये भी कृष्ण भगवान के अवतार है? अगर है तो कृपया समझा दीजिए, धन्यवाद।
यदि इनका उल्लेख शास्त्र में हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, यदि शास्त्र में चार वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत में यदि साईं बाबा का और जो भी आप नाम लिए उनका नाम, उनका उल्लेख है तो भगवान है, नहीं है तो भगवान नहीं है। सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, परंतु भगवान यदि शास्त्र में लिखा है तो है, नहीं तो नहीं है। आपने 60% भक्ति किया है तो पाकिस्तान में जन्म होगा ही नहीं। सुचिनाम श्रीमताम गे है योगो भ्रष्टो भी जायते, भक्ति करके जो मरता है वह तुरंत भक्त के घर पर जन्म लेता है। और श्रीमताम भक्त पैसे वाले भक्त के घर, जैसे पृथ्वी पर हम हर युग में कृष्ण की भक्ति का अनुभव करते हैं, हमें कृष्ण का ज्ञान है, उसी प्रकार दूसरे जो ग्रह हैं उन पर जो लोग या आत्मा है उनको कृष्ण का ज्ञान हाँ है। जैसे पृथ्वी पर कृष्ण की भक्ति हो रही है, कृष्ण के बारे में ज्ञान है, वैसे अन्य ग्रहों पर भी कृष्ण के बारे में कृष्ण की भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों में फेमस है। रामायण में श्री राम ने एक ही स्त्री सीता से शादी की और कृष्ण ने 16,000 गोपी से शादी, ऐसा क्यों? क्यों? प्रश्न अच्छा है। राम ने एक ही स्त्री के साथ विवाह किया और कृष्ण ने 16,108, क्योंकि राम जो थे कुछ अलग उद्देश्य से आए थे और कृष्ण जब आए तो कुछ अलग उद्देश्य था, उद्देश्य भिन्न था। भगवान राम आए तो उद्देश्य क्या था? अपनी आचरित प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे, अपने आचरण से। तो खुद एक विवाह किए तो उनके आचरण को देखेंगे संसार के लोग, एक पत्नी व्रत धर है तो हमें भी एक पत्नी होनी चाहिए। और कृष्ण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा धर्म का उपदेश देने के लिए, और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, अपनी लीला को प्रकट करने के लिए आए हैं और अपने सभी रसों को अपने भक्तों को प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए वह 16,000 के यहाँ 16 लाख और 16 करोड़ के साथ भी विवाह करेंगे, वे तो सबको संतुष्ट करेंगे। रामायण में कथा भी है ना कि ऋषि मुनियों ने कहा कि हे प्रभु राम, हमें आपके साथ रहना है, तो भगवान ने कहा इस युग में कुछ नहीं होगा, द्वापर में आइए सब। और ये सभी ऋषि मुनि गोपियां बनकर द्वापर में आई और कृष्ण के साथ ले गई ये सब। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा, हरे हरे राम। प्रकृति, काल और कर्म के बारे में संक्षिप्त में जान लेते, 5 मिनट प्रकृति, 5 मिनट काल, 5 मिनट कर्म और फिर व्यावहारिक जीवन में कैसे भगवत गीता को उतारा जाए। तो आइए हम जानते हैं प्रकृति क्या है। प्रकृति का सीधा अर्थ होता है शक्ति। जैसे शक्ति होती है तो उसके पीछे कोई शक्तिमान होता है, वैसे प्रकृति है तो इस प्रकृति का स्वामी कोई ना कोई है और वह है भगवान। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति भी कहा जाता है, पराशक्ति भी कहा जाता है। और इस अंतरंगा शक्ति में 3 शक्ति है, संबित, संदिनी, हलादिनी। ये सब टेक्निकल विषय आप केवल सुन लीजिए, इसमें पढ़ना और रिसर्च करना और उपदेश और प्रवचन तो बहुत लंबा लंबा हो सकता है। ये भगवान की शक्तियां हैं। एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति को भौतिक शक्ति भी कहा जाता है, अपराशक्ति भी कहा जाता है, और इस शक्ति को रजस सत्व और तमो भी कहा जाता है। और तीसरी है भगवान की तटस्थ शक्ति, और ये तटस्थ शक्ति है हम सब जीव। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण की यह जीव जो है तटस्था शक्ति है, तट अस्थ तट के ऊपर अस्थित जो शक्ति है वह। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रकृति जो है, हम जो प्रकृति देख रहे हैं, ये प्रकृति सहज है, बस ऐसे ही प्रकृति चल रही है। एक ऐसे धर्म है, एक ऐसा संप्रदाय है, वे तो यह मानते हैं और प्रवचन भी करते हैं, मैगजीन में भी लिखते हैं कि बस यह प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ करती है। परंतु आप देखिए, प्रकृति ही सब कुछ ठीक है, परंतु प्रकृति को चलाने वाला कोई ना कोई है, और वो है कृष्ण। गीता में खड़े खड़े कह रहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन हेतु नाने ये कौनते ये जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो प्रकृति है मई अधि अक्षेण, मयाध्यक्षेण, अक्ष का अर्थ होता है आंख और अधि का अर्थ होता है इशारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रकृति है मेरे आंख के इशारे से चलती है। सत्य है, प्रकृति भगवान के अंडर में है, भगवान की दासी है। और आप, भगवान ने केवल गीता में कहा नहीं, महाभारत के उस युद्ध में दिखा दिया। आप देखिए, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को छल कपट से कई लोगों ने मिलकर मारा था, सबसे बड़ा हाथ जयद्रथ का था, और अर्जुन को पता चला कि मेरे पुत्र को मारा है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल संध्या तक मैंने मेरे पुत्र के हत्यारे को नहीं मारा तो मैं स्वयं अपने गांडीव से आत्महत्या करके मर जाऊंगा। और यह बात जयद्रथ को पता चला, जयद्रथ ने सोचा युद्ध भूमि में आऊंगा तो मुझे मारेगा, कहीं जाकर छिप जाऊंगा। जयद्रथ दूसरे दिन पाताल में जाकर लोहे की एक रूम में जाकर छिप गया। और यहां पर अर्जुन ने उस महाभारत की उस कुरुक्षेत्र भूमि में बहुत ढूंढा, जयद्रथ मिला नहीं, अंत में संध्या हो गई, और अर्जुन, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं जाती है, अर्जुन स्वयं अपने गांडीव से अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ, हाहाकार मच गया। और जयद्रथ को पता चला मेरे दुश्मन अर्जुन का वध वह स्वयं करने जा रहा है, और ऐसे दुश्मन की हत्या तो अपनी आंखों से देखना चाहिए। तब जयद्रथ पाताल से बाहर निकला, कुरुक्षेत्र की भूमि में आया, और अर्जुन अपने ही गांडीव से अपना वध करने जा रहा था, और यह जयद्रथ जोर जोर से ठठाकर हंसने लगा, मुझे मारने चला था, प्रतिज्ञा लेकर बैठा, अब स्वयं अपने हाथों से मर रहा है। जब जयद्रथ बहुत हंसा, उसी समय आश्चर्यमय घटना, जो संध्या हो गई थी, सूर्य ढल गया था, आश्चर्यचकित बात कि वह सूर्य ढला नहीं, सूर्य सिर के ऊपर था, और दोपहर का समय था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन संध्या नहीं हुई है, दोपहर का समय है, दोपहर का 2 बजा है, मैंने सूर्य को इशारा किया था, वह छिप गया था, वास्तव में 2 बजा है, दुश्मन तुम्हारे सामने है, वध कर दो उसका। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा और अर्जुन के गांडीर से जयद्रथ का वध हुआ। देखिए, इस प्रसंग से यह देखने मिला कि कृष्ण ने सूर्य को इशारा किया, चला गया। बताइए, कृष्ण के अधीन है या नहीं है प्रकृति, और कृष्ण ने इशारा किया तो आ गया। इतना ही नहीं, भागवत के तृतीय स्कंध में भगवान कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं, मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात, दयत अग्नि वर्षत इंद्र मृत्युश्चरति मद भयात। ये जितने भी देवता है, जितने भी प्रकृति है, मेरे भय से चल रही है। तो ये प्रकृति भगवान की है, भगवान चलाते हैं, और भगवान को चलाने के लिए, इस प्रकृति को चलाने के लिए हमारी तरह रात दिन ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। भगवान बस सोते सोते इशारे से सब कुछ चलाते हैं। आप देखते हैं, शिरोदक सागर में भी शिरोदक शाही सोना, गर्भोदक सागर शाही सोना, कारोदक शाही सोना, भगवान तो बस केवल सोते रहते हैं। ये सब प्रकृति उनके आंख के इशारे से चलती है। कभी कभी होता होगा, भगवान वहां सोते हैं और यहाँ कैसे चलता है, तो आपने तो देखा होगा, मछली जो होती है अपने आंखों से अपने बच्चे को पोषण देती है, और कछुआ जो होता है अपने मन से अपने अंडे को पोषण देता है। पक्षी जो होते हैं उसको अंडे को पोषण देना होता है, उनके ऊपर बैठते हैं, उनका सेवन करते हैं। परंतु ये मछली कछुआ अपने अंडे से बहुत दूर होता है, परंतु दूर से मन से उसका सेवन करता है। तो साधारण जीव यदि ये कर सकता है तो भगवान है ना, ये तो अपने धाम में बैठकर समग्र प्रकृति को चलाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकृति जो है कृष्ण के अधीन है, कृष्ण की दासी है। तो प्रश्न ये हो सकता है कि यह भौतिक जगत का निर्माण कैसे हुआ, ते तो आप सुन ही चुके हैं। कृष्ण से बलदेव, बलदेव संकर्षण, महाविष्णु, कर्णदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी भगवान गर्भदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल निकला। गर्भदक्षाय विष्णु की नाभि से एक कमल। अब ये गर्भदक्षाय विष्णु क्या है, थोड़ा विस्तृत से समझा दूं आपको कि जब कर्णदक्षाय विष्णु कारण सागर में सोते हैं, अपनी सांस छोड़ते हैं, तो रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भदक्षाय विष्णु होते हैं, और उस एक ब्रह्मांड में गर्भदक्षाय विष्णु सोए हैं, और उसकी नाभि से एक कमल निकलता है, और कमल की डंडी जो होती है बहुत लंबी होती है, और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और उस कमल की डंडी में 13 लोक है, और उसमें सबसे बीच वाला लोक है वो है पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे ये सब पृथ्वी कमल की डंडी में है, कमल की डंडी में बीचों बीच पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, सातवां पृथ्वी, पृथ्वी के भूलोक, भूलोक के ऊपर भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। इस प्रकार ये 14 लोक गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से जो कमल निकला उस कमल की डंडी में है। हम सब कहां पर है, भगवान विष्णु की कमल की डंडी में सब है। यह है विज्ञान, यह है शास्त्र। और उस कमल का सबसे ऊपर का भाग जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं वह है कमल, वहां ब्रह्मा जी रहते हैं। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तपस्या की, और तपस्या करके भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और कहा कि तुम, ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम 84 लाख योनि का निर्माण करो। भगवान विष्णु से ज्ञान लेकर ब्रह्मा जी योनिया बनाई। पद्म पुराण में वर्णन है जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर ब्रह्मा जी ने जल में रहने वाले तैयार किए, जैसे शार्क, वेल इत्यादि, अलग अलग 9 लाख अलग अलग प्रकार के। तो जल में 9 लाख प्रकार के जीव, स्थावरा लक्ष्य विशंति, और 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे की रचना की, क्रिमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के छोटे छोटे नदी नाली में रहने वाले कीड़ों की रचना की, पक्षीणाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षियों की रचना, 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख प्रकार के चार पांव पर चलने वाले पशुओं की रचना, और 4 लक्षाणी मानुष, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य की रचना की। और इस मनुष्य में आभीर, कंक, खस, यवन, शबर, म्लेच्छ, गंधर्व, किन्नर इत्यादि बहुत सारे 4 लाख प्रकार के मनुष्य। इस प्रकार 84 लाख योनि का ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया, और सभी जीव को अपने अपने कर्म के अनुसार फिट किया। परंतु इस प्रकृति में एक विषय महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा जी ने यह 84 लाख योनि बनाई, परंतु 84 लाख योनि में सबसे महत्वपूर्ण योनि है मनुष्य योनि, क्योंकि मनुष्य योनि जो है वह जंक्शन के समान है। ये सब स्टेशन है, परंतु मनुष्य जीवन जंक्शन है। इस जंक्शन रूपी मनुष्य जीवन में जो जैसा कार्य करता है वह उस स्थान पर जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्तादो गच्छन्ति तामसा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो सत्व गुण में रहकर अच्छे कार्य करते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वे ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुण में रहकर जो रजोगुणी कार्य करते हैं इस पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, तमोगुण में रहकर पाप करते हैं वो नरक लोक में जाते हैं। तो मनुष्य जीवन जंक्शन के समान है, मनुष्य को चाहिए कि इस मनुष्य जीवन में सत्व शुद्ध सत्व में स्थित होकर भगवान के धाम को प्राप्त करें। इस प्रकार से ये प्रकृति है, तत्पश्चात प्रकृति के बाद भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में काल का वर्णन करते हैं। काल अर्थात समय, आज हम समय को सेकंड से जानते हैं, सेकंड। तो जब 60 सेकंड होती है तब एक मिनट बनता है। आप ध्यान से सुनिए, अब सुपर फास्ट चलेगा। जब 60 सेकंड होती है तब एक मिनट बनता है, जब 60 मिनट मिलती है तब एक घंटा होता है, जब 12 घंटे होते हैं तब एक दिन और 12 घंटे की रात, 24 घंटा जब होते हैं तब एक पूर्ण दिन हो जाता है, 24 घंटे का एक दिन। ऐसे 30 दिन बीतते हैं, ऐसे 30 दिन बीतते हैं तो एक महीना होता है, ऐसे 12 महीने बीतते हैं तो एक साल होता है, ऐसे 432,000 वर्ष बीतते हैं तब एक कलयुग होता है, और 864,000 वर्ष बीतते हैं तब एक द्वापर युग होता है, 12,96,000 वर्ष बीतते हैं तब त्रेता युग होता है, और 17,28,000 वर्ष बीतते हैं तब सतयुग बीतता है। ये कलयुग, द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग, ये चारों युग की अवधि मिलाया जाए तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 43,20,000 वर्ष जब 1,000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी के एक दिन का 12 घंटा बीतता है। ब्रह्मा जी का 12 घंटा ब्रह्मा जी का 12 घंटा, और वैसे ही ब्रह्मा जी की रात है। तो आप जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा हुआ, 8,64,00,000,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन। यहां पृथ्वी लोक पर 8,64,00,000,000 वर्ष बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, और ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का एक महीना, और वैसे 12 महीने का एक साल, और वह ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, और ब्रह्मा जी का जब 100 साल बीतता है तब भगवान विष्णु एक बार सांस लेते हैं। कल्पना करो भक्तों, ये भगवान विष्णु कितने बड़े हो गए, कितने विशाल हो गए। ब्रह्मा जी का एक जीवन भगवान की एक सांस की अवधि, और भगवान का एक सांस ब्रह्मा जी का जीवन गया, और यहां तो हम जैसे कितने कीड़े मकोड़े आकर चले जाते होंगे। देखिए, काल बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। समय की महिमा को, समय की महत्ता को यदि किसी ने जान लिया तो निश्चित वह जीवन में प्रगति कर सकता है। हम लोग समय की महत्ता को नहीं जानते हैं, समय को व्यर्थ ही गवाते हैं। आप देखिए, भगवान ब्रह्मा और देवता की तुलना में हमारा जीवन कुछ है ही नहीं, और फिर भी हम कहते हैं अभी तो बहुत जीना बाकी है। वास्तव में कुछ नहीं, हम लोग सोचते हैं कि बहुत जीना है, बहुत जीना है। और कुछ लोग तो, दुख तो हृदय में तब होता है जब मूर्ख लोग कहते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग ताश खेलते हैं, कुछ लोग मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, और हम पूछते हैं ऐसा क्यों करते हैं, कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। फिल्म क्यों देखते हैं, क्रिकेट क्यों देखते हैं, टाइम पास। अरे मूर्ख, तुम क्या टाइम पास करोगे, टाइम तुम्हें पास कर रहा है, एक दिन आएगा और मृत्यु आ जाएगी। काल चक्र स्वयं भ्रमिम भागवत में आया है, यह काल का चक्र कभी रुकता नहीं है। पूरी दुनिया मिलकर भी इस काल चक्र को रुकाना चाहे कभी रुकेगा नहीं। पानी की तरह ये दिन बह रहे हैं, इस काल की, समय की महिमा को जानना चाहिए। एक एक सेकंड हमारे जीवन की कीमती है, जीवन की एक सेकंड चली गई दोबारा आने वाली नहीं है। जो दिन गया वह दिन फिर से नहीं आएगा, इसलिए सूरदास जी कहते हैं मन पछतई है अवसर बीते। वहां पर सूरदास जी का फोटो लगा है, फोटो देखकर याद आ गया। मन पछतई है, अवसर बीतने के बाद, मर जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अभी से ही ये समय की महिमा को जान लेना चाहिए। परंतु हम तो मस्त है उस चूहे की तरह। दृष्टांत दिया गया है भागवत में, चूहा जब अपने लिए घर बनाता है तो उसके बहुत सारे दरवाजे बनाता है। आपने देखा होगा चूहा इस खेत से अपना बिल बनाना शुरू करता है, खेत के दूसरे कोने से निकलता है और उसमें बहुत सारे दरवाजे। जैसे यहाँ पर मनुष्य पैसे कमाता है और प्लान लगाता है कि यहाँ फ्लैट करेंगे, ड्राइंग रूम बनाएंगे, बेडरूम बनाएंगे, किचन बनाएंगे, मास्टर बेडरूम बनाएंगे, ये प्लान वो प्लान प्लान प्लान, तब तक तो जैसे चूहा प्लान बनाता है और प्लान बनाते बनाते जैसे ही बिल के बाहर निकलता है वह सांप बैठा हुआ था है, गप करके खा लेता है सारा प्लान समाप्त। वैसे संसार में मनुष्य बस प्लान करता है, यहां बंगला, यहां घर, ये गाड़ी, ये वो प्लान करते करते एक दिन काल आता है, नष्ट कर देता है। तो वास्तव में इस काल की महिमा को जानना चाहिए। काल की महिमा को जानने के लिए शास्त्र में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है। एक बार इंद्र घूमते घूमते लोमस ऋषि के पास आए। लोमस ऋषि का नाम इसलिए हुआ क्योंकि उनके शरीर पर बहुत सारे रोंगटे थे। रोंगटे जानते हैं, ये बाल जो होता है उसे रोंगटे कहते हैं। और इतने सारे, जैसे आप भालू को जानते होंगे, भालू के शरीर पर कितने रोंगटे होते हैं, पूरा शरीर रोंगटे से भरा हुआ था, इसलिए उसे लोमस ऋषि कहते थे। परंतु समय बीतते ही अपभ्रंश भाषा में लोमस नाम हो गया। तो ऐसे लोमस ऋषि भगवान के भक्त थे। इंद्र घूमते घूमते लोमस ऋषि के पास आए और लोमस ऋषि के पास आकर उन्होंने देखा कि ये भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। और लोमस ऋषि घास का एक बंडल था, वे रखकर उनकी छांव में भगवान का महामंत्र जप रहे थे। सूर्य जब इस पार आ जाए तो यहां की छांव में आकर बैठ जाते थे। तो इंद्र आकर पूछे, लोमस जी आप अपने लिए एक कुटिया बना लीजिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, यहां से उठकर यहां बैठना, यहां से उठकर यहां बैठना। तब लोमस ऋषि ने कहा, जीना है बहुत कम दिन के लिए और क्या कुटिया बनाना, क्या फजीहत में फंसना। तब इंद्र को जिज्ञासा हुई कि आप कह रहे हो कम जीना है तो कितना जीना है, 10-15 दिन 20-25 दिन। इंद्र ने पूछा कि आप कितने दिन तक जियोगे, आप ऐसे कह रहे हो जीना है बहुत कम दिन, क्या फजीहत में फंसे, घर बनाए। इंद्र ने पूछा तो लोमस ऋषि ने जवाब दिया कि मेरा जीवन कितना यह जानना चाहते हो आप, मेरे शरीर पर रोंगटे देख रहे हो ये बाल। ब्रह्मा जी की जब मृत्यु हो जाती है तब मेरे शरीर का एक बाल टूटता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 8,64,00,000,000 वर्ष, और ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूर्ण होता है तब मेरे शरीर का एक रोंगटा गिरता है। जिस दिन सभी रोंगटे गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होने वाली है। और ऐसे लोमस जी कह रहे हैं जीना है बहुत कम दिन, क्या फजीहत में फंसे, क्या घर बनाए, और हमें उस लोमस ऋषि के एक पॉइंट, 1% क्या उसके पॉइंट के बराबर भी जीवन नहीं है, और हम सोचते हैं कि अब तो बहुत जीना है, ये प्लान करेंगे, ये बनाएंगे, ये घर लेंगे, ये करेंगे। वास्तव में क्या हमारा जीवन है, और उसमें भी ये फिक्स नहीं है कि हम लोग 50-100 साल तक जिएंगे, कभी भी मृत्यु आ सकती है। जिस लोक में हम रहते हैं ना, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। अन्य लोक में भी मृत्यु होती है परंतु इस लोक का नाम स्पेशल मृत्यु लोक इसलिए रखा क्योंकि इस लोक में पृथ्वी पर कभी भी और कहीं भी मृत्यु आ सकती है। तो जीवन बहुत कम है, समय की महिमा को जानना है। और गीता में जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान को उग्र रूपम, जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और विश्व रूप दिखाकर अर्जुन कांप गया, तब अर्जुन ने कहा भगवान को उग्र रूपम, इस उग्र रूप में कौन हो, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रवुत्तम। हे अर्जुन, इस संसार में जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं काल हूं और नष्ट कर देता हूं, और जो लोग मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं प्रेम से उनको लेने के लिए आता हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विर्याणी तस्या अखिल देह बाजा अंतर बहिर पुरुष काल लूपे, अंतर बहिर भगवान अंदर में पुरुष रूप में और बाहर काल रूप में। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान काल के समान है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए काल के समान है, और जो भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान परम सुंदर ईश्वर है। तो इस प्रकार से ये काल के स्वरूप को जानकर हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और तत्पश्चात भगवान ने गीता में बहुत बार कहा है कि आप कुछ मत दो, आप अपना समय मुझे दो। कितनी बार कहा, अंत काले चमामेव तस्मात सर्वेशु कालेशु। काल के बारे में कहते हैं अपना जो काल है मुझे दीजिए। तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मरयुत च। और वास्तव में हम हमारा समय कृष्ण को देंगे। जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस जीवन का लाभ कब है? हम तो बिजनेसमैन है ना, बिजनेस करते करते यह देखते हैं प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। यदि मनुष्य, भागवत में यह प्रश्न उठा, मनुष्य जीवन का प्रॉफिट क्या है, तब शुद्ध गोस्वामी कहते हैं जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मरते समय, मृत्यु काल में, अंत समय में भगवान नारायण की, कृष्ण की याद आ जाए तो समझ लेना चाहिए मनुष्य जीवन सक्सेस, नहीं तो आप फेल हो गए। यह है मनुष्य जीवन का लाभ। परंतु अंत में भगवान का स्मरण करने के लिए पूरे जीवन में अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तब भगवान प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार काल के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। अब कर्म के बारे में सुनिए। कर्म का सीधा अर्थ होता है कार्य। कार्य को संस्कृत में कर्म कहते हैं। अब आप देखिए, इस संसार में किसी भी कार्य की एक, किसी भी क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। शायद न्यूटन ने ही, हाँ, ग्रेविटी फोर्स न्यूटन ने ही यह साबित किया था। एक बार न्यूटन को स्कूल से निकाल दिया गया, तो पेड़ के नीचे बैठे थे, पत्थर को ऊपर फेंका तो ऊपर से नीचे आया। तो बुद्धिमान था ना आखिर। आप देखिए, आप बॉल को जितना दीवार के साथ फेंकोगे उतना वो रिटर्न आएगा। किसी भी क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसी भी कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। तो जैसा कार्य होता है वैसी प्रतिक्रिया होती है। अच्छा कार्य करते तो अच्छी प्रतिक्रिया, बुरा कार्य करते तो बुरी प्रतिक्रिया। आप अपने मित्र को जोर से लात मारो तो प्रतिक्रिया लात मिलेगी, आप अपने मित्र को प्रेम करो तो प्रेम मिलेगा। सीधा हिसाब किताब है। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा है वैसे समझने जाए तो ज्यादा क्या बताऊं। गीता में भगवान तीन प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। जहां पर कर्म शब्द आया है, कर्म का अर्थ होता है सामान्य कर्म। जैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो करने ही होते हैं, जैसे सुबह उठकर स्नान करना, नियत कर्म जैसे कहा जाता है, ब्रश करना, इसे कर्म कहा जाता है। विकर्म का अर्थ होता है भगवान के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन, भगवान के बनाए गए नियम के विरुद्ध जो कार्य करता है उसे विकर्म कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में विकर्म को पाप कहा जाता है। और तीसरा है अकर्म। तो यदि कोई कर्म करता है तो इसी पृथ्वी पर रह जाता है, यदि कोई विकर्म करता है, पाप करता है, तो पाप के फल स्वरूप उसे नरक में जाना होता है। और यदि कोई व्यक्ति अकर्म करता है, अब आप देखिए, इस संसार में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य पूर्व जन्म के कर्म का फल है। कैसे पता लगाएंगे? कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्किंग, मेहनत करने से पैसा मिलता है। तो किसी का जन्म धीरूभाई अंबानी के घर पर हुआ, बिना मेहनत के करोड़पति बन गया भाई। और किसी का जन्म रोड पे रहने वाले झोंपड़े में हुआ, बिना मेहनत के करोड़पति है वह। अब कितनी भी मेहनत करे पैसा नहीं आ सकता है। ये सब ठीक है, परंतु वास्तव में कर्म के अनुसार सब मिलता है। आप देखिए, कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं तो दिन के 200 रुपया कमाते हैं, और कुछ लोग हमारे डायमंड मार्केट में एक फोन करते हैं 2 लाख कमा लेते हैं एयर कंडीशन में बैठकर। ये क्या है? एक व्यक्ति रात दिन हाथ गाड़ी चलाता है 200 रुपया, और एक व्यक्ति एक फोन करके 2 लाख रुपया, यह है कर्म का सिद्धांत। पिछले जन्म में वह हाथ गाड़ी वाले ने बुरा कर्म किया होगा, इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद भी फल बहुत कम मिल रहा है, और इसने कुछ अच्छा कर्म किया होगा तो कम मेहनत में फल ज्यादा मिल रहा है। यह है कर्म, यह है, इसका अर्थ यह है कि कर्म का सिद्धांत निश्चित इस संसार में लागू है और हम सब लोग कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। आज हम जो कार्य कर रहे हैं वे पूर्व के जन्म का फल हो सकता है, अथवा हम कोई एक ऐसा हटके नया कार्य कर रहे हैं जिसका फल आगे मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कर्म की प्रतिक्रिया होती है, कार्य की प्रतिक्रिया होती है, तो हो सकता है अभी हम जो कार्य कर रहे हैं उसका फल आगे मिलेगा, अथवा पीछे हमने जो कार्य किया है उसका फल हम भोगत रहे हैं। अब ये दोनों में से क्या है ये तो भगवान ही जान सकते हैं। गीता में भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को जानना बहुत गहन है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए ताकि पूर्व के बंधन में, कर्म के बंधन में जो बंध है उससे भी मुक्त हो जाए और आगे नया कर्म भी न बने। और ऐसा कर्म एकमात्र अकर्म है। अकर्म करने से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और नया कर्म का बंधन हम पर नहीं लगता है, और यह अकर्म करने से भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं और मरने के बाद हम भगवान के धाम में जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति न तो कर्म करता है न विकर्म करता है, बुद्धिमान व्यक्ति अकर्म करता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम लोग पाप नहीं करेंगे इसलिए हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, सारी वृत्ति को बंद कर देते हैं, परंतु वे मूर्ख नहीं जानते हैं इस संसार में कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि वश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। भगवान कहते हैं एक सेकेंड भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म तो निश्चित करना है। तो कौन से कर्म करें? यदि विकर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, कर्म करेंगे यहीं रह जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति अकर्म करता है, और अकर्म को दूसरे शब्द में भगवान की भक्ति कहा जाता है। कृष्ण की भक्ति ही अकर्म है। कृष्ण की भक्ति करने से पूर्व के कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे और मृत्यु के बाद भगवान के धाम में जाएंगे। इसलिए भगवद गीता का सार देते हुए अंत में 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये अर्जुन, जीवन में भले कितने भी पाप किए हो, गलत कर्म किए हो, परंतु सभी धर्मों को, छोटे बड़े धर्म, देवताओं के धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, ये सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम, मेरी अकेले की शरण में यदि कोई आ जाता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करता हूं। तो भगवद गीता का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। कुछ लोग कहते हैं भगवद गीता का सार ऑफिस हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारे भगवान है, उनको संतुष्ट करना ही हमारी भक्ति है, और लिखा है गीता सार। अब जान दुकान के बाहर ऐसी कोई बात गीता में नहीं लिखी है। आप धन से बिस्तर खरीद सकते हो परंतु नींद नहीं, आप धन से सुख खरीद सकते हो परंतु शांति नहीं। गीता सार, ये कुछ गीता सार नहीं है, बस ये अपना सार है, ये गीता सार नहीं है। गीता का सार यही है कि सब कुछ छोड़कर कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करने से ही पापों से मुक्त होंगे और कृष्ण के धाम को प्राप्त करेंगे और सुखी हो पाएंगे। ये है गीता का सार। अब अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, कृष्ण की भक्ति, ये भक्ति का शब्द सुनकर डर नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग डर जाते हैं, प्राय कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले, भक्ति मतलब अब हमें भी सफेद कपड़े पहनने होंगे, टकलू करना होगा, लंबी लंबी शिखा। आप डरिए मत, देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए सबको वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों ने पहन ली है, ठीक है। वैसे ही भक्त बनने के लिए सबको ये मुंडन ये सब जरूरत नहीं है। आप पैंट शर्ट में, जींस टी शर्ट में, आप कहीं भी हो, ऑफिस में, स्कूल में, घर में भक्ति कर सकते हो। अब देखिए, यदि आप गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक माने जाओगे। वैसे भगवान के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करो, भक्त बन गए, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठ जाओ, ये करो वो करो, भगवान के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके फॉलो करो, आप भक्त हैं। तो प्रश्न होगा भगवान के रूल्स और रेगुलेशन क्या है। ज्यादा नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत कम। चार यम है और पांच नियम है। चार चीज नहीं करना है और पांच चीज करना है, तो पहले क्या सुनना पसंद करोगे, नहीं करना है वह या करना है वह? करना है वह। मैं तो सोचता हूं नहीं करना है वह सुनना चाहिए, क्योंकि जब आग लगती है तो कुछ लोग कहते हैं किसने आग लगाई, किसने, अरे पहले तू वहां से बाहर तो निकल। तो जब आग लगती है तो पहले आग को बुझाना चाहिए और फिर ढूंढना चाहिए। तो वैसे सबसे पहले जीवन में जो गलत काम हो रहे हैं उसे बंद कीजिए और बाद में कुछ अच्छे कार्य। तो चार चीज नहीं करना है, पांच करना है। यदि ये आपने नौ चीज जीवन में उतार दिया, आप भक्त बन गए, और ये करते रहेंगे कंटिन्यूस, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, इस जीवन में भी सुखी हो जाएंगे, मृत्यु के बाद भगवान का धाम परम सुखी। तो ये संक्षिप्त में बता दूं चार चीज क्यों नहीं करना है। और ये चार चीज नहीं करना है हम लोग या प्रभुपाद जी अपनी बुद्धि से नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र में लिखा है, भागवत के प्रथम स्कंद में आया है, दूतम पानम सुनाम मत्तम यत्र अधर्म चतुर्विधा। ये धर्म अधर्म का चार स्थान है। चार चीज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना चाहिए। अब मांसाहार में भी आप सबको समझ लेना चाहिए है? मच्छी, फिर ये मुर्गा फुर्गा, ये जो भी है मुझे तो नाम नहीं याद है, और अंडा भी मांसाहार में आता है। कुछ लोग कहते हैं अंडा मांसाहार नहीं, वेजिटेरियन है, मूर्ख लोग, ये अंडा भी नॉन वेजिटेरियन है, तो ये सब नहीं खाना चाहिए। तत्पश्चात नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं, ताश तीन पत्ती और शेयर बाजार। शेयर बाजार में आप इशू कर सकते हो, लेकिन अब जो सट्टा है वह तो नहीं करना होगा, ये भी एक जुआ है। भगवान कहते हैं जुआ किसी भी प्रकार का नहीं। तत्पश्चात नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं। नशा में शराब, सिगरेट, तंबाकू, पान, मावा, गुटखा, जर्दा, जो भी है। आप ऐसा मत समझो मैं कुछ भूल गया तो हम बस वह खाना चाहिए, अब सब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी नशे में आता है, चाय कॉफी कांदा लहसुन जो भी है वो नहीं। और अखाद्य चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे कांदा लहसुन इत्यादि, ये सब नहीं खाना है। और अंत में नो इलिशियट सेक्स, पर स्त्री संग नहीं करना है, अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी भी स्त्री के साथ सहयोग या सहवास नहीं करना चाहिए। ये चार चीज नहीं करना है, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, और पर स्त्री संग नहीं। और प्राय इसका पालन कुछ लोग करते होंगे, अब दो तीन चीज छोड़ना होगा, चाय कॉफी कांदा लहसुन, थोड़ा मछली इत्यादि छोड़ना होगा, और सब तो कर ही रहे हैं, ये तो नहीं करना। अब जो करना है वह सुन लीजिए, करना है उसमें सबसे पहली चीज है भगवान के भक्तों का संग करना है, साधु संग, भगवान के भक्तों का संग, क्योंकि कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का मूल क्या है? साधु संग। आज आप यहां पर आए और पांच दिन में इतना ज्यादा ज्ञान मिला जो ज्ञान 50 साल में भी नहीं मिल सकता है। कुछ लोग 50-50 साल के सफेद हो गए हैं, पूछिए उसे आज तक इतना ज्ञान मिला आपको? इतना ज्ञान यहां पर मिला क्यों? क्योंकि किसी ना किसी भक्त के साथ संग हुआ, कोई भक्त मिला तब भक्ति में आए। भगवान के भक्तों का संग ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पहली बात। तत्पश्चात भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के महामंत्र का जप रेगुलर करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एटलीस्ट मिनिमम एक दिन में 16 माला जप करना चाहिए। तो कुछ लोग पूछते हैं 16 ही क्यों? तो इसका उत्तर ये है, आप दे सकते हैं कि हम एक दिन में 20,000 से 24,000 के बीच में सांस लेते हैं एक दिन में। कुछ लोग जल्दी जल्दी सांस लेते होंगे तो 24,000 तक पहुंच जाते होंगे, कुछ लोग 22, एक दिन में 20 से 24,000 के बीच में सांस लेते हैं। और जब 16 माला हम जप करते हैं तो एक माला में 16 नाम, तो 16 माला में भी 24,000 या 22,000 भगवान का नाम होता है। तो एक दिन में आप 16 माला जपोगे तो आपके प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम आ जाएगा, टिक जाएगा, इसलिए आपका एक दिन भगवतमय हो जाएगा, नाममय हो जाएगा, इसलिए 16 माला मिनिमम एटलीस्ट। तो पहला भगवान के भक्तों का संग, दूसरा भगवान के नाम का जप, तीसरा श्रीमद् भागवत का अध्ययन। भागवत जो है सबसे श्रेष्ठ पुराण है, इस भागवत को पढ़ना और सुनना चाहिए, तीन हुआ। और चौथा है अर्च विग्रह की पूजा, घर पर बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, उनमें भगवान के विग्रह या भगवान की तस्वीर, उनकी आरती पूजा होनी चाहिए। और पांचवा है धामवास, भगवान श्री कृष्ण की धाम गोकुल मथुरा वृंदावन द्वारका मायापुर अयोध्या जगन्नाथपुरी ये सब धाम में वास करना, यह है पांचवी चीज। तो कुछ लोग कह सकते हैं हम लोग इतना दूर कैसे जाए, हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी की असीम कृपा से वही धाम हमारे मुंबई में एक नहीं तीन तीन जगह पर है। ये जो इस्कॉन के मंदिर है ये वृंदावन से कोई कम नहीं है, वृंदावन से अलग नहीं है, हम प्रति रविवार को इस्कॉन में जाते हैं तो ये वृंदावन के बराबर है। इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में एक वीक में एक बार हम सबको जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये पांच चीज फिर से आपको गिना दूं, भक्तों का संग, भगवान के नाम का जप, श्रीमद् भागवत का श्रवण, अर्च विग्रह की पूजा और भगवान के धाम में या भगवान के मंदिर में जाना, ये पांच चीज। और वह चार चीज नहीं करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है प्रभु जी। यदि किसी को यह बहुत मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत छोड़िए, आप जैसे हैं वैसे बने रहिए। कुछ लोग छोड़ने में बहुत कष्ट होता है ना, परंतु आप कुछ मत छोड़िए। मैं तो अंत में यही कहता हूं, केवल कृष्ण को अपने जीवन में उतार दीजिए, यह सब कुछ ऑटोमेटिक छूट जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी जब भारत से अमेरिका जा रहे थे और 70 साल की आयु थी, और प्रभुपाद जी अमेरिका में तब तो सब लोग 24 घंटा पाप में पड़े हुए लोग थे, नशे में, और प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक भी आया। प्रभुपाद जी के मन में हुआ कि मैं इतने बड़े पापियों को कैसे सुधारूंगा। तब प्रभुपाद जी ने एक भजन की रचना की, बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अध मेरे पति। उस भजन में प्रभुपाद जी को भागवत की महिमा याद आई, शुणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्तोई भद्राणी विधुनति सुहत सताम। भगवान का एक स्वभाव है कि जब वो किसी के हृदय में आते हैं तो सबसे पहले उसका हृदय धो डालते हैं, साफ करते हैं। और भगवान को हृदय में ला सकते हैं भगवान के नाम के द्वारा। तो हम जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमारे हृदय में आते हैं और हृदय में आकर जितनी भी गंदगी है, मैल है, सबको साफ कर देते हैं और हम परम पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। तो कुछ न हो कोई बात नहीं, केवल भगवान के नाम का जप करने लगिए, जीवन में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम। कुछ लोग कह सकते हैं भगवान के नाम का जप, भगवान के कौन से नाम का जप? तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है यही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ये मंत्र ही नहीं, ये महामंत्र है, इसलिए इस मंत्र का जप करना यही मनुष्य का जीवन का परम कल्याण है, परम सार है। तो भगवद्गीता का अंत, भगवद्गीता का यह सिद्धांत यही पर अंत होता है कि भगवान का नाम जपिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह पांच कार्य नवदा भक्ति कीजिए और अपना जीवन भक्तिमय बनाइए। इससे इस जीवन में भी आप सुखी हो जाएंगे और मृत्यु के बाद आने वाले जीवन में भी आप सुखी हो जाएंगे। और अंत में आप सब भक्तों के चरणों में अंतिम प्रार्थना और अनुनय विनय करता हूँ कि इस पांच दिनों में हम तो आपके लिए बिल्कुल नए वक्ता हैं, और आप भी हमारे लिए नए श्रोता है। इस गत 5 दिन में क्या बात कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इस 5 दिन में आप सब भक्तों से हमें बहुत प्रेम प्राप्त हुआ। आप सब लोग बड़े श्रद्धा से, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से यहाँ पर गीता कोर्स का श्रवण कर रहे थे और मेरे उत्साह को बढ़ा रहे थे। इस पिछले 5 दिनों में, गत सत्र में, यदि हमसे कुछ कठोर शब्द निकल गए हो और हमारे शब्द से किसी के हृदय में कुछ ठेस पहुंची हो, कष्ट हुआ हो, तो आपका पुत्र समझकर, आपका छोटा भाई समझकर आप हमें क्षमा कीजिएगा। हमारा कोई इरादा नहीं था किसी को कष्ट देना, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना। हम तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के उपदेश भगवद गीता को प्रकट करना चाहते थे, आपको समझाना चाहते थे। यदि कुछ गलती हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो और कुछ कठोर शब्द निकल गया हो, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपकी तरह भगवान की भक्ति कर सके और आपकी तरह उत्साह से हम भी भगवत कथा का श्रवण कर सके। हरे कृष्ण।